इस सेशन में मैं अपना गेस्ट जो है उन सबको स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। सबसे पहले बीके नरेंद्र पटेल जी बड़ौदा से, बीके मोहन सिंगल जी हमारा नेशनल कोऑर्डिनेटर साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के, पीवी कुबालकर भाई जी जो जीएम रिटायर्ड ओएमजीसी वडोदरा से, अशोक गुप्ता जी जो सेक्रेटरी बाकरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड चंडीगढ़ से, और भारत भूषण जी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है बाकरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड चंडीगढ़ से, राजयोगिनी बीके निरंजना जी जो सीनियर राजयोग का टीचर है वडोदरा से, और राजयोगिनी गोदावरी दीदी जी जो हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर मुंबई के हैं, और बीके विनोद जैन जी वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ट्रॉमा हॉस्पिटल माउंट आबू रोड से। इन सबको मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच पर पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। और जोर से इस सेशन में सबसे पहले आप सबका मैंने फीडबैक भी लिया था, तो एक सेशन के बारे में काफी कंप्लेंट आए। बता सकते हैं कौन सा सेशन है? जो कंकरेंट डायलॉग सेशन हुए थे सबका कंप्लेंट यही था कि हम सभी अटेंड नहीं कर पाए, एक ही अटेंड करना पड़ा क्योंकि साथ साथ चल रहे थे। आप सबको ऐसा लगा? हाँ, इसके बारे में सबसे ज्यादा कंप्लेंट आए। तो इसलिए हर बार हम क्या करते हैं, इस पांचों सेशन का जो एसेंस है सबको मिले उसके लिए आउटकम ऑफ कंकरेंट सेशन का एक स्पीच जरूर रखते हैं। तो हमारे सामने आज नरेंद्र पटेल भाई जी है जो बड़ौदा से अपना समर्पित भाई है और साइंटिस्ट इंजीनियरिंग से काफी पहले से जुड़े हुए हैं, वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है। तो ये आपके लिए सभी सेशंस का जो एसेंस है उन्होंने कंपाइल किया है, रिपोर्ट बनाया है, तो वो अभी आपके सामने इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे ताकि आप सबको बाकी सेशंस में भी क्या हुआ है वो आप सुन सके।
ओम शांति। रिस्पेक्टेड स्पीकर्स ऑन द डायस एंड डियर डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अभी हमारा जो कॉन्फ्रेंस है लाइफ बैलेंस लाइफ ब्यूटीफुल, उसके साथ में जो पांच पैरेलल सेशंस हुए थे, पांच स्ट्रीम में डिवाइड किया गया था, जो हर एक स्ट्रीम लाइफ के एक पहलू को डिपिक्ट करती हुई, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, प्रोफेशनल, इमोशनल, इसलिए सारे ही जिसमें कुछ हुआ था ऐसे सेशंस तो बहुत ही दो घंटे के लिए था, लेकिन उसमें से शॉर्ट करके जिस्त जो है मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। द फर्स्ट सेशन स्ट्रीम वन रिलेशनशिप बैलेंस एंड इट वॉज चेयर्ड बाय मिस्टर बी आर पटेल, जनरल मैनेजर एसीसीएल कोरबा छत्तीसगढ़। मेन जो बात उसमें बताई गई कि रिलेशनशिप्स मेक्स अवर लाइफ ब्यूटीफुल and also brings bliss in our life. Three things in life which needs maintenance: man, machine and relationship. इसीलिए relationship को maintain करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना है. We can say the ABC to maintain the relationship. A is for the assess, accept. एसेस करते रहो अपने रिलेशनशिप को भी, और जो कुछ भी हुआ है, कुछ चेंजेस है, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट भी करते रहो। बी इज फॉर द बिहेवियर, लवफुल बिहेवियर, इसीलिए उसको कहा गया कि सेल्फलेस लव होना चाहिए। सी इज फॉर कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन ही पहला ऐसी बात है जो रिलेशनशिप में कुछ भी बिगाड़ आता है, एक दूसरे के साथ में बनती नहीं है, तो पहले कम्युनिकेशन ही स्टॉप हो जाता है। इसलिए उसमें कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डी इज फॉर द डिसिप्लिन, ई फॉर इमोशनल मैच्योरिटी, एम्पथी ऑल्सो, और उसमें ये बात भी है कि हमारे अंदर में जो ईगो है, बहुत करके ईगो क्लैश बहुत होता है, जहां पर ये खास करके देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही इक्वल लेवल के हैं, तो उनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो इतना अच्छी उनकी बनती नहीं है, क्योंकि ईगो क्लैश बहुत ही होते रहते हैं, इसीलिए उसमें नो ईगो। एफ इज फॉर फॉरगिव एंड फॉरगेट, जी फॉर गुड विशेस टू ऑल, सभी के प्रति गुड विशेस करते रहे। ये खास करके रिलेशनशिप के लिए ध्यान में रखने की बात है। साथ में एक और भी बात है, ट्रस्टीशिप। हम ट्रस्टी होकर के घर में रहे, वी आर नॉट द ओनर ऑफ द हाउस, वी आर द ट्रस्टी इन द हाउस। और साथ में बिलीव इन कर्मिक अकाउंट, हमें जो भी रिलेशनशिप मिले हैं हमारे कर्मों के आधार पर, पूर्व के कोई कर्म है उसके आधार पर, इसीलिए वो कर्मिक अकाउंट को मान करके अगर करते हैं तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। और हैप्पीनेस को हमेशा साथ में ध्यान में रखें, हैप्पीनेस को, क्योंकि हम ये करते हैं कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स बना करके रखते हैं, ये होगा उसके बाद में ये करेंगे, जैसे कि बच्चे की एग्जाम है तो ये पास हो जाएगा तो हम ये करेंगे, अगर वो पास नहीं हुआ तो डिस्टर्बेंस आ जाता है। इसीलिए हैप्पीनेस अभी से ही करते रहे, माना कि उसके लिए गोल के साथ में अटैच नहीं करें, डोंट पोस्टपोन योर हैप्पीनेस। और खास करके देखा गया है कि तीन रिलेशन पर बहुत ही ध्यान देना है, एक है माता पिता और बच्चे, दूसरा है पति पत्नी, और तीसरा है सास और बहू। तो कहते हैं कि जैसे बच्चा छोटा होता है तो माँ उसका ध्यान रखती है, लेकिन बड़ा हो जाता है फिर थोड़ा सा उसको भी थोड़ा वो आ जाता है, ईगो आ जाता है, और वो माँ पूछती है कि थोड़ा सा टेंशन में क्यों हो, कहते हैं तेरी समझ में नहीं आएगा। अभी ये कंडीशन आ जाती है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। पति का मैरिज होने के बाद में माँ कहती है कि ये बहू का हो गया, माना कि पत्नी का हो गया, और पत्नी कहती है कि ये माँ का ही सुनता रहता है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट बनी रहती है। तो ये तीन संबंधों में बहुत ध्यान रख करके करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कई एक व्यक्ति ने बहुत ही अच्छा कहा है कि सन इज सन अंटिल वाइफ एंड डॉटर इज डॉटर अंटिल लाइफ। बच्चों पर कुछ बनने के लिए प्रेशर ना करें, कुछ बनने के लिए, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अधिकारी, ऐसे कुछ बनाने के लिए प्रेशर ना करें। और खास करके लास्ट में ये एक ध्यान में रखने की बात बताई कि आज का जमाना ईमेल का है, ई बैंकिंग, ई फाइनेंस, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, उसमें हम ईश्वर को ही भूल गए हैं। ईश्वर को याद रखें, ईश्वर के साथ में सभी कनेक्शन रखें, सभी रिलेशन रखें। स्ट्रीम नंबर टू, टॉपिक वॉज टैपिंग माइंड पावर। इट वॉज चेयर्ड बाय मिस्टर बी एम चौहान, जनरल मैनेजर IREDA लिमिटेड, न्यू दिल्ली। मन जो है एक थिंकिंग फैकल्टी है, बहुत सारी बातें अभी भी थोड़े से सुना है जिसमें कहा कि मन में विचार बहुत चलते हैं, मन के कुछ पार्ट्स अगर थिंकिंग वाइज, थॉट्स वाइज अगर निकाले तो कहते हैं उसमें पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, और जो भी जरूरी है वो इतने थॉट्स चलते हैं। तो ये सारों का वो करके कहा है कि ज्यादा विचार चलते हैं सारे दिन में। अभी भी जैसे पीयूष भाई ने बताया कि 40,000 से 50,000 जितने थॉट्स चलते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, जहां पर ज्यादा ट्रैफिक होता है तो क्या होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, कन्फ्यूजन, इसीलिए केओस, ये सारी बातें। विश्वविद्यालय में एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर दिखाई गई है, खास करके सिखाते हैं, हर घंटे पे आपने देखा होगा, सुना होगा बाहर में होते हुए, हर घंटे में एक गीत बजता है, उसमें आधा मिनट के लिए हम अपने मन के ट्रैफिक को स्टॉप करते हैं। तो ये सारा ही वो रखा है कि मन के ट्रैफिक को बार बार स्टॉप करते रहे, जिसके आधार पर वहां पर केओस ना हो जाए, नहीं तो फिर हमारा जो मन का जो पावर है वो हम उसको गंवाते रहेंगे। मन ही सुपर कंप्यूटर है, जैसे कि कोई व्यक्ति के पास में कंप्यूटर हो लेकिन अगर वो कंप्यूटर को चलाना ही नहीं जानता हो तो उसके लिए वो वेस्ट है। इसी प्रकार से हमारे पास में मन है लेकिन मन को किस प्रकार से चलाना, किस प्रकार से उसकी एनर्जी को टैप करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बात को अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारे लिए जैसे कि मन की शक्ति को टैप करना ही आएगा नहीं, और टैप कर नहीं सकेंगे, हमारा सारा ही जीवन उसी कंफ्यूजन में, केओस में ही चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि मन की शक्ति अपार, तो कम संकल्प करने से ही मन शक्तिशाली बनता है। इसीलिए पॉजिटिव संकल्प जो होते हैं, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान और शक्ति जो है, आंतरिक शक्ति, ये सारी बातें जो होती है वही पॉजिटिव एनर्जी है। उसकी तरफ जितना ही जाएंगे मन ऑटोमेटिकली शांत होता जाएगा, हमारे थॉट्स जो है कम होते जाएंगे और हमारे जो भी संकल्प है वो दृढ़ होते जाएंगे। इसीलिए दृढ़ संकल्प वाला कोई भी दुनिया का कार्य कर सकता है, उसको कोई भी चैलेंज हो उसके लिए कुछ नहीं लगेगा, उसको वो आसान करके पार करके चला जाएगा। मेडिटेशन से ही ये मन को दृढ़ कर सकते हैं, इसीलिए खास करके मेडिटेशन का समय खास निकाले, उसमें भी सुबह का समय फ्रेश हम होते हैं, उसी समय अगर मेडिटेशन करेंगे, मन को भी थोड़ा सा उसी तरफ ध्यान में वो करेंगे तो हमारा जो मन है वो शक्तिशाली हो जाएगा। हमारे स्ट्रीम नंबर 3 हेल्दी लाइफस्टाइल, चेयर्ड बाय राजयोगी बी के आत्म प्रकाश भाई जी, एडिटर ज्ञानामृत शांतिवन। उसमें खास हेल्दी लाइफस्टाइल में कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन है कि हेल्थ इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिसीज बट इट इंक्लूड्स द फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चारों ही पहलू हमारे जीवन के अंदर में होने चाहिए। फिजिकल वेल बीइंग, इसीलिए हेल्थ के लिए प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, ये सारी बातें हैं, और जितने भी हमारी इंटरनल सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, कार्डियोवेस्कुलर, जिस भी सिस्टम्स है, ऑल सिस्टम शुड रन प्रॉपरली, तो हमारा फिजिकल हेल्थ हुआ। फिर है मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ के लिए तो हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर है सोशल, आजकल कहा गया है, एक सर्वे ये बताता है कि पहले के समय के अंदर में लोग सोशल सर्विस किया करते थे, एक महीने में एवरेज 30 आवर्स, रोज का एवरेज 1 घंटा। आज लोग जो सोशल सर्विस करते हैं तो कहते हैं कि बहुत ही कम हो गई है, पूरे महीने के अंदर में 12 मिनट्स ओनली, इतनी कम सोशल सर्विस। इसीलिए हमारा सोशल पहलू है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया है, इसीलिए हमें वो भी ध्यान रखना है। जैसे कहा गया है कि नदी ना अपना जल पीती, पेड़ ना अपना पल खाते, पर उपकार के लिए ही ये अपना जीवन बिताते हैं। तो उसी अनुसार हम भी कुछ सोशल सर्विस करें, कुछ चैरिटी करें और लोगों के लिए। इसीलिए CSR भी बनाया गया है, हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसे ही डाला गया है कि हर एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट मेकिंग है वो उनको 2% ऐसे CSR सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए स्पेंड करना चाहिए। फिर है स्पिरिचुअल पहलू, वी आर द सन्स ऑफ ओनली वन फादर गॉड, तो उनके प्रति हम कहे कि ये समझ के आधार पर हम जब एक्ट करेंगे तो हमारी जो फाइनल इच्छा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा ही विश्व हमारा कुटुंब हो जाए, ये कुटुंब की भावना हो जाएगी और उसके आधार पर हम सभी एक होकर के बहुत ही अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं या तो विश्व को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। फिर खास ये कहा गया है कि अब तक बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हो गए हैं, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया, फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ जो मिल्क प्रोडक्शन, तो वो भी उस तरफ ध्यान दिया गया। आईटी रिवॉल्यूशन, वो भी एक रिवॉल्यूशन हुआ, लेकिन ओनली वन थिंग इज मिसिंग, देखिए वो है स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, जो कि खास करके ब्रह्मा कुमारी दे रही हैं। हमारे यहाँ पर 25,000 जो डेडिकेटेड सिस्टर्स हैं, उनके द्वारा बहुत सारे सेंटर्स हैं, आपने सुना होगा 131 देशों में, 137 जो कंट्रीज है उसके अंदर में 8,500 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं, और ये सारे ही कार्य उसके द्वारा चल रहा है, एक रिवॉल्यूशन। और वही रिवॉल्यूशन का जो मेन थीम है कि वी आर वन गॉड वन फैमिली, यही एक थीम लेकर के हम सभी कर रहे हैं। फिर है स्ट्रीम नंबर 4, द थीम वॉज वर्क लाइफ बैलेंस, इट वॉज चेयर्ड बाय मिस्टर वी शिवाशंकर, जनरल मैनेजर अल्ट्राटेक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर आदित्य सीमेंट वर्क चित्तौड़गढ़। अभी जो देखा गया है कि जो भी नया जनरेशन आया है, मल्टीटास्किंग बहुत बढ़ गया है, इसलिए कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो वर्क में भी वो इफेक्ट होता है। बार बार लोग वर्क भी कहते हैं कि वहां पर चेंजेस करते रहते हैं, जो जॉब है वो भी चेंज करते रहते हैं, ये सारा ही एक प्रकार का एक स्ट्रेस बन गया है। और साथ में हर एक वर्क प्लेस पर ये देखा गया है स्ट्रेस बहुत है, क्योंकि वर्क ज्यादा है और टाइम की स्कर्सिटी है, तो ये सारा होने के कारण में स्ट्रेस लेवल बहुत ही इंक्रीज हो गया है। तो वही स्ट्रेस को क्या करते हैं हम, नॉर्मली स्ट्रेस को वहां ही छोड़ करके नहीं जाते, वो स्ट्रेस जो है हम घर ले जाते हैं, घर का जो स्ट्रेस है वो फिर वहां पर आता है। एक छोटी सी बात है, उसमें कहते हैं कि एक बार बॉस आए घर से, घर में कुछ झगड़ा हुआ था, तो फिर वहां पर आए तो किसी सबॉर्डिनेट को, एम्प्लॉय को बुलाया तो फिर उस पर बरस पड़े, बहुत ही उसको फायरिंग दे दिया, वो तो बाहर जा करके फिर वो बहुत ही टेंस हो गया, थोड़ा सा ऐसे बैठा, थोड़ा सा पियून को बुलाया, फिर पियून को फायरिंग दे दिया, अभी पियून किसको फायरिंग देगा, इसीलिए वो तो पूरा दिन तो गया लेकिन अंदर में तो वो चलता ही रहा, विचार तो चलते रहेंगे, तो फिर घर जा करके फिर उसने पत्नी को फायरिंग दे दिया। और पत्नी क्या करेगी, तो बच्चा बैठा था बाहर से, वो घूम रहा था इधर उधर, वो उसको दो चार चांटे मार दिया, कहता है कि पढ़ते नहीं है यहाँ पर, ऐसे ही घूमता रहता है, पढ़ने बैठ, वो पढ़ने बैठ गया। फिर पत्नी है वो अंदर में जाकर के कुछ रसोई बनाने लगी, जो पिताजी आए थे वो तो फिर टीवी देखने लगे, तो बच्चा धीरे से अंदर से बाहर निकल गया, तो बच्चा गया तो गली में एक कुत्ता बैठा था, उसको लात मार दिया। स्ट्रेस ट्रांसफर ही होता रहता है, बढ़ता रहता है, कहां पर भी कम नहीं होता है, इसलिए स्ट्रेस वहां से यहाँ आता है, यहाँ से फिर वहां जाता है। ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी स्ट्रेस है हम कैरी नहीं करें, वर्क प्लेस से घर, घर से वर्क प्लेस पर, ये हमें बैलेंस रखने की बहुत ही जरूरी है। फिर साथ में ये भी बताया गया है कि यूएस के अंदर में, जापान के अंदर में, स्वीडन के अंदर, कहते हैं कि ये बहुत ही रिच कंट्रीज हैं, लेकिन सुसाइड रेट देखेंगे उसमें ही मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि यही वहां पर वर्क बैलेंस ही डिस्टर्बेंस देखा गया है, इसीलिए हमें एक बात की तरफ ध्यान रखना है कि हम कौन है और हमारा रोल क्या है, इसीलिए दोनों का जो डिफरेंस है वो मन के अंदर में ध्यान रखना है। वी आर ए सोल एंड रोल इज ऑल्सो ए डिफरेंट अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस जिसको कहते हैं, दैट इज अ सोल कॉन्शियसनेस, हेल्प्स टू डिस्चार्ज द कॉन्फ्लिक्ट्स एसोसिएटेड विद द रोल। ये तरफ हम ध्यान रखें, नहीं तो क्या है कि आजकल में फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ रहा है, डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। पहले के जमाने में कहते थे कि 1-2% का ही डिप्रेशन था, और अभी जो है 7-8% बढ़ गया है इतना, तो उसकी तरफ ध्यान रखें। फिर है कि लाइफस्टाइल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वन, और लास्ट में खास करके जो गेस्ट आए थे उन्होंने भी खास यही बताया कि जो एफर्ट्स है ब्रह्मा कुमारीज के, खास करके ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के जो कुछ लेक्चर्स सेमिनार्स अटेंड करते हैं, उसके द्वारा ये भी वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करती है, उसके लिए हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सॉरी ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ये बहुत ही बैलेंस लाने के लिए बहुत ही अच्छा एक सराहनीय कार्य होता रहता है। और लास्ट जो स्ट्रीम थी इमोशनल इंटेलिजेंस, इट वॉज चेयर्ड बाय मिस्टर के श्रीराम, डायरेक्टर ओरेकल इंडिया लिमिटेड हैदराबाद। कहते हैं कि आईक्यू इंटेलिजेंस होते हुए भी अपने प्रोफेशनल फील्ड में सक्सेसफुल तो होते हैं, लेकिन दूसरे सभी फील्ड में वो अनसक्सेसफुल रहते हैं। और फिर इसलिए ही कई सेलिब्रिटीज को हम देखते हैं कि वे सुसाइड कर लेते हैं या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जैसे कि गुरुदत्त है, डेल कार्नेगी है, जो कि मोटिवेशनल लीडर्स होते हुए भी खुद भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे लोगों ने भी वो सुसाइड कर लिया। अभी ही बात चली थी, कहीं पर पेपर में भी आया था, दीपिका पादुकोण फेमस जो एक्ट्रेस है उसको भी डिप्रेशन आ गया, तो 2-3 महीने के लिए वो फिर दूर चली गई और डिप्रेशन का वो कर माना कि क्यों होता है, क्योंकि इमोशनल जो क्वेश्चन है उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। इसीलिए सक्सेस के लिए कहते हैं कि 20% ऑफ आईक्यू प्लस 80% ऑफ ईक्यू गिव्स यू सक्सेस। और क्राइम रेट भी क्यों बढ़ता है, क्योंकि इमोशनल जो क्वेश्चन है या तो इंटेलिजेंस है, स्किल है, वो कम होती जा रही है। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस होगा तो इट कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। हमारे इमोशंस का कंट्रोल स्विच जो भी रिमोट है वो हमारे पास ही होना चाहिए, औरों के पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके आधार पर इमोशनली हमें डिस्टर्ब करके भी कुछ भी कार्य गलत हो या अच्छा हो दोनों करवा सकते हैं। इमोशनल स्किल्स के लिए कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। कहते हैं बी ए गुड लिसनर, सुनना सीखे, हम बोलना तो जानते हैं लेकिन सुनना भी सीखे। बी पॉजिटिव, फिर है डोंट बी स्ट्रेसफुल, स्ट्रेस नहीं रखे, टेक डिसीजन योरसेल्फ। बी कॉन्फिडेंट, वैल्यू अदर्स, दूसरों को भी वो करे कि उनकी भी वैल्यू है, जैसे कि कहा कि यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड। मैनेज योर इमोशंस, इवैल्यूएट योरसेल्फ। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज हायर देन इमोशनल इंटेलिजेंस, इसलिए उस तरफ हमें फाइनली जाना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, इमोशंस को भी कंट्रोल करने के लिए, इमोशनल भी ज्यादा ना हो जाए उसके लिए हमें मेडिटेशन का अभ्यास करते रहना है। उससे हमारी इमोशंस की जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारे पास ही रहेगी। तो ये सारी बातों को हम अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारा ये जो पांचों जो फील्ड है वो हमारा एक बैलेंस में रहेगा। और जो हमारा जो कॉन्फ्रेंस का मेन थीम है, लाइफ बैलेंस एंड लाइफ ब्यूटीफुल, वही बातों को हम बहुत ही अच्छी तरह से करके जीवन में अपनाते हुए अपना जीवन भी बहुत श्रेष्ठ बना सकेंगे, अन्य का जीवन भी हम श्रेष्ठ बनाने के कार्य में लग सकेंगे। ओके, थैंक यू, ओम शांति।
ओम शांति। हम फिर से अपने सभी अतिथियों को स्वागत करते हुए ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करूंगा कि वो सभी को बैडजेस और फूल देकर स्वागत करें। और इतने में मैं नरेंद्र पटेल भाई जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छे से आपको बहुत शॉर्ट में, जो एक एक सेशन 1.5 घंटा चला था, उन सबका बहुत शॉर्ट में 15-20 मिनट में आपको सार सुना दिया। अभी अब सभी तालियों से नातियों का स्वागत करें। गोदावरी दीदी जी, डॉक्टर निरंजना दीदी जी, भारत भूषण जी, मोहन सिंगल भाई जी, कुबालकर भाई जी, विनोद कुमार भाई जी, नरेंद्र पटेल भाई जी, और आप सबको पता है वेद व्यास भाई जी। तो अभी पूरा कॉन्फ्रेंस आपने काफी सुन लिया, लाइफ बैलेंस लाइफ ब्यूटीफुल, ये कॉन्फ्रेंस पिछले 3 दिनों से चला, अभी समाप्त होने पर भी आ रहा है, कल आप निकलकर वापस घर पर भी जाएंगे, मगर इसके बाद क्या करेंगे? थोड़ा तो आपको आइडिया है, मगर अभी हम अपने मोहन सिंगल भाई जी, जो ब्रह्मा कुमारी साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग का चेयर नेशनल कोऑर्डिनेटर है, जो इस पूरा कॉन्फ्रेंस का इंजन जैसा सामने से ये चलते हैं, तो बाकी सब इनके साथ चलते हैं, तो कॉन्फ्रेंस सुचारू रूप से चलता रहा, तो ये अभी हमको बताएंगे कि कॉन्फ्रेंस के बाद क्या। मोहन सिंगल भाई जी,
ओम शांति। मंच पर विराजित सम्मानित अतिथिगण तथा सभा में उपस्थित आप सभी बहनों और भाइयों, अभी कहा जा रहा था आज कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन है, तो भले ये 3-4 दिन की कॉन्फ्रेंस उसका आखिरी दिन लगभग, लेकिन जीवन की कॉन्फ्रेंस, जीवन में इम्प्लीमेंटेशन, उसका कल से नया प्रथम दिन शुरू होगा। कोई भी कोर्स होता है, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, लॉ का हो, तो एक कोर्स जब हो जाता है उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है। तो लर्निंग स्टेज तो आपकी लगभग यहाँ पूरी हुई। लाइफ को भी कहा जाता है, ये जो 4 वर्ड्स हैं L डिनोटिंग लर्निंग स्टेज, तो वो तो कुछ हद तक पूरी हुई। अब लाइफ का I जो है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, वो आपकी कल यहाँ से जाने के बाद शुरू होगी, क्योंकि थ्योरेटिकल तो आपने सब कुछ सुना, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर पता चलेगा कि क्या क्या इसमें डिफिकल्टीज आ रही हैं और कैसे उन्हें पार करना है। और जब उसमें भी थोड़ा और प्रवीण हो जाएंगे, फिर लाइफ की तीसरी स्टेज F फाइंडिंग, क्योंकि मनुष्य जीवन में सब पढ़ लिख लेता है, पैसा कमाता है, फैमिली रेस कर लेता है, सब कुछ होता है, लेकिन एट सम स्टेज वन स्टार्ट्स रियलाइजिंग दैट इट इज नॉट एनफ, नॉट एवरीथिंग, देयर इज समथिंग लैकिंग इन लाइफ, एंड दैट व्हाट वन रियलाइजेज दैट इट इज द मेंटल पीस, लास्टिंग पीस एंड हैप्पीनेस। तो जीवन में सुख साधन कमा लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन जो लास्टिंग पीस है, हैप्पीनेस है, वो मनुष्य कई बार जीवन में अनुभव नहीं कर पाता। तो उसके बाद उसका फिर नेक्स्ट स्टेज, लास्ट स्टेज आता है एवोल्यूशन, LIFE। तो वो एवॉल्व करता जाता है कि हाउ टू फाइंड दिस थिंग, सब कुछ भौतिक होते हुए भी देयर इज सम वैक्यूम। और यहां पर जो ये बताया जाता है, ये चारों स्टेज जो है रफली इकट्ठी चलती है। तो ये लर्निंग इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस प्रोसेस, जाने के बाद प्रेलिमिनरी लर्निंग हो गई आपकी, लेकिन ये लर्निंग प्रोसेस भी चलेगा, इम्प्लीमेंटेशन भी जीवन के अंदर, जब आप डीप यू गो इनसाइड, तो फाइंडिंग स्टेज वो भी चलती रहेगी एंड एवोल्यूशन स्टेज। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस जाने के बाद यहां से लौकिक रीति से कहा जाता है दुनियावी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो यहां पर आपने मेडिटेशन का थोड़ा सा तो सीखा, लेकिन प्रैक्टिकल में आप ये अनुभव करते होंगे, भाई लाल लाइट भी हो गई, म्यूजिक भी है, लेक्चर भी बहुत अच्छा सुन लिया, शीलू बहन का, उषा बहन या गीता बहन आदि आदि, लेकिन जब योग लगाने बैठते हैं तो मन भाग जाता है, और स्वाभाविक है। मेरा भी यही अनुभव था, हर एक व्यक्ति का, ब्रह्मा बाबा का भी ये अनुभव था शुरू में, कि जब लगाने बैठते हैं मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है। और लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मुझे इस इंस्टीट्यूशन में 50 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि पहले जब योग करते थे, मानो आधा घंटा योग किया हार्डली आधा एक मिनट योग लगेगा, 29 मिनट तो बुद्धि बाहर के काम धंधा जो पेंडिंग वर्क्स है और उन सब में भाग जाती है। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो टाइम पीरियड कम होता रहेगा जो आपका दिमाग के भागने का है, और कंसंट्रेशन स्टेज बढ़ती जाएगी। और अभी हम अनुभव करते हैं कि अगर मानो आधा घंटा योग करते हैं, अभी भी आई कांट क्लेम इवन आफ्टर 50 ईयर्स कि पूरा 30 मिनट लग जाता है, बट अप टू ए वेरी गुड एक्सटेंट मे बी 28 मिनट 29 मिनट, इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द टाइप ऑफ द पेंडिंग वर्क एंड सो मेनी अदर थिंग, बट मोस्टली ऑटोमेटिकली उस समय और चलते फिरते कार्य करते कंसंट्रेटिव स्टेज हो जाती है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस को छोड़िएगा नहीं, एक तो ये काम करिएगा, यहां से जाने के बाद आप इस मेडिटेशन का और इस पढ़ाई की कंटिन्यूटी कायम रखेंगे। डिस्टेंस कोर्सेज तो होते हैं आजकल बहुत ज्यादा, यहां से भी कॉन्टेक्ट रख सकते हैं, नहीं तो लोकल ब्रांच से आप कॉन्टेक्ट रखेंगे और इस मेडिटेशन को की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है आप जीवन में इतनी स्टेबिलिटी महसूस करेंगे कि एडवर्स सिचुएशन तो लाइफ में आएंगी लेकिन उन एडवर्स सिचुएशंस को आप सक्सेसफुली क्रॉस कर सकेंगे। इसमें एक आवश्यकता यह है कि बिल्कुल इसके कंटिन्यूसली लोकल जो ब्रांच है हमारी उसके कॉन्टेक्ट में आप रहेंगे, और सबसे पहला इनिशियल स्टेज ये हो सकता है यहां से जाने के बाद आप लोकल ब्रांच में जाके अपना यहां का एक्सपीरियंस शेयर करें, जहां पर भी जिसके थ्रू आए हैं वहां पर एक्सपीरियंस जब शेयर करेंगे तो आपको अपने जैसे बहुत लोग मिलेंगे जो फैमिली लाइफ में रहते हैं और उन्होंने उसको कैसे क्रॉस किया हर्डल्स को, तो वो आपके जीवन में एक अद्भुत मार्ग दिखाएगा। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि दिन तो दिन रात 24 घंटे का होता है, बढ़ नहीं सकता, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क कल्चर जो है उसके अनुरूप चलना पड़ता है। ये सब होते हुए भी आप अपना रूटीन थोड़ा सा रीसेट करिएगा, ये जरूर। अक्सर करके क्या होता है, जब रात को हम ऑफिस से या काम से आते हैं थके हुए होते हैं, टीवी चला लिया, बैठ गए, खाना खा लिया, और देर रात को जब सोते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा सुबह जो वातावरण है जो स्पिरिचुअली चार्ज रहता है उसका हम लाभ नहीं उठा सकते और उठते देर हो जाती है। तो थोड़ा सा रिशेड्यूल ये करिएगा कि हर हालत में रात को 10 बजे के अंदर तक सो जाए, और सोते समय एक ये संकल्प करिएगा, बस हे प्रभु मैं आत्मा, मेरा शरीर यहाँ बिस्तर पर विश्राम कर रहा है और मैं आत्मा आपके पास आकर के गोदी में, आपकी गोदी में आराम कर रही हूँ, और बस मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से न्यारी हूँ और मैं आत्मा शांति धाम में, शांति की स्थिति में विश्राम। तो जो थॉट लेकर के आप सोएंगे, और ये थॉट लेकर के सोइएगा कि कल सुबह मेरी नींद भाई 5 बजे खुल जाए, जितने बजे आप चाहते हैं, तो आप देखिएगा विदाउट एनी अलार्म जो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी है वो ऐसी रीसेट हो जाती है कि उस वक्त हमारी इमीडिएटली नींद खुल जाएगी। आप सबका अनुभव है जब नेक्स्ट डे कहीं फ्लाइट लेनी होती है, ट्रेन लेनी होती है, तो कई बार रात को नींद खुलती है और एकदम वहां, क्योंकि माइंड उस तरफ हमारा कॉन्शियस होता है। तो इसमें भी आप बायोलॉजिकल क्लॉक को जब सेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली विदाउट एनीथिंग वो आप उठ जाएंगे, और उस वक्त बस आवश्यकता ये है कि आपका फर्स्ट थॉट कितना पावरफुल होता है। बस यूजुअली क्या होता है, जब सुबह उठते हैं या तो न्यूज़पेपर हाथ में आ गया या टीवी खोला तो ऐसे न्यूज का वो होता है, तो वो जो होता है हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग वो अगर कहीं थोड़ा फॉल्टी रहती है वो सारा दिन भर वो चलती रहती है। तो माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए, इफेक्टिव प्रोग्रामिंग के लिए जरूरत है कि शुरू में आप थोड़ा सा ये न्यूज़पेपर टीवी को मॉर्निंग में अवॉइड करें, और उसके बाद बिस्तर से उठते ही ना एकदम डोंट जंप आउट ऑफ बेड, और वहां पर यही संकल्प करिए, बस आज का मेरा दिन कल से बहुत अच्छा गुजरेगा, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं और आज मुझे अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स का और निर्माण करना है, बनाना है। यहाँ पर जो आपको बताया गया है, लिटरेचर में भी कई ऐसे लिटरेचर अवेलेबल हैं, सीडीज ऐसे अवेलेबल हैं, वो सब आपको मॉर्निंग में अगर करा तो बस थोड़ा सा सुनेंगे वैसा ही थॉट। तो प्रोग्रामिंग अगर माइंड की ऐसी पावरफुल हो गई, वो सारा दिन भर वो प्रोग्रामिंग वैसी रहेगी और न सारा दिन आपको क्रोध की सिचुएशन बनेगी, कोई लोग आपका डिसओबे करेंगे, लेकिन उससे पहले ही माइंड में एकदम क्लिक हो जाएगा कि नहीं, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे इस रीति से डील करना है इस सिचुएशन को। तो जब सिचुएशन को जो कन्वेंशनली हम डील करते आए हैं उसकी बजाय अगर हम एक नए वे में डील करेंगे, आप देखेंगे कि आपके कॉलीग्स, जूनियर्स, सीनियर्स, जो भी आपके वर्क फील्ड के लोग हैं, वो आपको थोड़े दिन में ही ना ऐसी सिचुएशन जो टाइम टू टाइम पैदा करते हैं, वो आपका चेंज्ड एटीट्यूड, चेंज्ड बिहेवियर देख करके क्या होगा, उनकी सिचुएशन, वो सिचुएशन जो होगी आएगी, लेकिन आपका जो इनपुट होगा उनके भी इनपुट को चेंज कर देगा। लेकिन शुरू में हो सकता है क्योंकि इतने दिनों की आदत पड़ी हुई है, वी मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल, लेकिन अगर माइंड में अवेयरनेस होगी और ये अवेयरनेस आपके मॉर्निंग के फर्स्ट थॉट से आएगी, तो इसीलिए सुबह आपका जो फर्स्ट थॉट है वो स्पिरिचुअली एनर्जेटिक होना चाहिए। और जैसे बता रहे थे सुबह होने के बाद टाइम टू टाइम, यहां पर 5 वक्त बताया जाता है शुरू में, आप भी ऐसा करके जाए एज पर योर कन्वीनियंस, भाई यहां तो जो 10:30 बजे, 12 बजे, शाम को 5:30 और इवनिंग में 7:30 और रात को 9:30, ऐसे टाइम में ट्रैफिक कंट्रोल, उसे बोलते हैं मेंटल ट्रैफिक, वो आप जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि सुबह आपका पावरफुल हो गया लेकिन थोड़े दिन में देर में वो भूल जाएगा, अगेन वी विल कम बैक टू अवर नॉर्मल सिचुएशन। इसीलिए टाइम टू टाइम रिचार्ज करने की बहुत आवश्यकता है और उसमें बीच बीच में अपने को आप रिमाइंड कराइए। और उसके लिए हम लोग तो क्या करते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल का ये बना हुआ है कुछ इंस्ट्रूमेंट, घड़ी भी ऐसी होती है, वो टाइमली अलार्म कर देते हैं और इस तरीके से, तो बीच बीच में जितना रिचार्जिंग होती रहेगी ये, और जैसा कहा जा रहा था सारा खेल है ही मन का, थॉट्स का। इसीलिए एक बार मन की अगर ट्यूनिंग हमने राइट डायरेक्शन में कर ली, वो फिर आपको सारा होल डे में फायदा देती रहेगी। और उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे लोकल ब्रांच के कांटेक्ट में रहेंगे, तो वहां पर सुबह के वक्त जो करेंगे, कई बार सुबह टाइम नहीं है तो शाम को या ट्वाइस ए वीक ऐसा करके जाएंगे, तो एनवायरमेंट बहुत हेल्पफुल है। यहां आप आए हैं तो यहां आपको एनवायरमेंट की बहुत बड़ी हेल्प है, लेकिन जैसे ही आप इस एनवायरमेंट से निकलेंगे फिर से आपको वो वर्ल्डली एनवायरमेंट में ऐसा होगा, ऐसी सिचुएशंस डेवलप होंगी कि आपके नेगेटिव थिंकिंग वो स्टार्ट हो जाएगी। और उसके लिए क्या, ये यहाँ का जो मॉडल है, एनवायरमेंट है, द सेम एनवायरमेंट इज अवेलेबल जो हमारी लोकल ब्रांचेस है। तो वहां पर क्योंकि यहां तो आप हमेशा रह नहीं सकते हैं, आएंगे नहीं, तो लोकल जो ब्रांच है वहां पर आप जाके थोड़ा मेडिटेशन, तो वो स्पिरिचुअल चार्ज जो है वो आपका सारा दिन वो चलेगा। तो इस तरह आज इसका समापन नहीं है बल्कि एक नया जीवन जैसे आपका आज यहां से शुरू हो रहा है। और मुझे याद आ रही है भ्राता जी जो कह रहे थे नरेंद्र भाई क्राइम रेट का, तो क्रिमिनल एटमॉस्फियर, और ये तो मुझे याद आता है, मैंने एक सर्वे पढ़ा था, यूएस में सर्वे हुआ था कि लोग क्रिमिनल क्यों बनते हैं या निगेटिविटी क्यों बढ़ती जा रही है। तो उसमें बताया गया था ज्यादातर जो हार्ड क्रिमिनल्स वगैरह बनते हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करके बताया था मोर देन 85% वो क्रिमिनल बनते हैं जिनको अपने परिवार में प्रेम नहीं मिला होता है, मदर फादर से या किसी परिवार वाले से। और जब प्रेम का अभाव होता है ना, आत्मा तो प्रेम स्वरूप है, लेकिन आत्मा को जब प्रेम मिले तो आप ये एक पक्का कर लीजिए कि आप जाएंगे परिवार से पहले स्टार्ट करें, जो भी सिचुएशन हो, काफी सिचुएशन ऐसी होंगी जो हमारी थिंकिंग के अनुरूप ना हो, फिर भी हम उन्हें प्रेम दें, बच्चों को, परिवार वालों को, माता पिता, जो ऑर्गेनाइजेशन में कॉलीग्स हैं, जूनियर हैं, गलती सबसे होती है। तो उससे क्या होगा कि ये एटीट्यूड जब एक डेवलप हो जाता है तो निगेटिव थिंकिंग हमारी ही नहीं बल्कि हमारे साथ जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं उनकी अपनी थिंकिंग भी बदल जाएगी और इस तरह हमारा जो परिवर्तन है, लेकिन वी हैव टू मेक बिगिनिंग फ्रॉम माई सेल्फ, अपने से। इफ वी चेंज यहां की पूरी फिलॉसफी डिपेंड करती है इनसाइड आउट. हम पहले हम बदलेंगे फिर संसार बदलेगा. इन्हीं शब्दों के साथ आपके आगे आने वाले जीवन के बहुत दिन मधुर रहें, उनके प्रति मेरी शुभकामना है. और ये आशा है कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे, अभी तो आप हमारे गेस्ट बन के आए हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो और अपने कॉलीग्स वगैरह को यहां पर लेकर के आएंगे, उनके गाइड बन करके आएंगे और इस तरह हम एक नया सुखमय समृद्ध संसार बनाने के लिए हम लोग सब संगठित रूप से ईश्वर के इस महान कार्य में सहयोगी बनेंगे. धन्यवाद. ओम शांति.
धन्यवाद मोहन सिंघल भाई जी, आपने हम सबको एक मार्गदर्शन दिया कि अभी यहां जाने के बाद हमको क्या करना है. हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करनी है, रेगुलरली मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है और लोकल ब्रह्मा कुमारी सेंटर की जो शुद्ध वातावरण वहां पर मेडिटेशन का मिलता है उसका पूरा पूरा लाभ उठाना है. इसके आगे अभी हम जो पूरा कॉन्फ्रेंस 3 दिन से सुनते आए हैं, इस पूरा कॉन्फ्रेंस का एक रिपोर्ट बनाया गया है और इसका एक्शन प्लान कि हम इन सब से क्या सीखा है और क्या हम अपने साथ लेके जाएंगे और क्या करना चाहते हैं, क्या क्या आउटकम आए हैं पूरा सेशंस में, ये सब आपको सुनाने के लिए हमारे साथ है मिस्टर पीवी कुबालकर भाई जी. ये भी अपना विंग के काफी नजदीक और पहले से हमारे साथ जुड़े हुए आत्मा है. ये ONGC में जब काम करते थे तब भी काफी सेवा इन्होंने दी है और अभी कुबालकर भाई जी आकर हमको सुनाएंगे ये पूरा सेशन कॉन्फ्रेंस का रिपोर्ट और एक्शन प्लान. ओम शांति. कुबालकर भाई जी.
ओम शांति. परम आदरणीय गोदावरी दीदी, निरंजनाबेन, नरेंद्र भाई, वेदव्यास जी, मोहन भाई जी, भरत भूषण जी और जैन साहब और मेरे डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस, ये जो बैलेंस, लाइफ बैलेंस एंड लाइफ ब्यूटीफुल, एक इतना छोटा सा 2 वर्ड का स्लोगन था है ये. और आपने देखा कि ये 3-4 दिन से हम इस पे अलग अलग पहलुओं पे बातें कर रहे थे, सुन रहे थे, अनुभव कर रहे थे. आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं मैं. आप जब देखते कि एक आदमी या एक औरत, गुजरात में औरतें भी वो लारी खींचती है लोहे की, 2-2 टन उसमें वजन होता है और वो 2 टन वजन वो कैसे खींच पाते हैं. बेसिक प्रिंसिपल उसका लाइफ ये जो है वो दैट इज द बैलेंस. और आदमी का लाइफ भी ऐसा बैलेंस हो तो उसका जो वजन है, जो ढोना पड़ता है उसको, जो दूसरे दूसरे पहलू, वो एकदम इजी हो जाता है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी यदि वो लोड से मैच हो जाती है, जैसे आप साइंटिस्ट इंजीनियर से, यदि वो ग्रेविटी और वो वजन मैच हो जाए तो वो वजन कोई भी बच्चा भी खींच सकता है. तो वैसे ही हम लोग बैलेंस करना सीखे तो लाइफ में हमें समय भी बहुत मिलेगा और लाइफ हमारा ब्यूटीफुल बनेगा. तो अभी ये जो 3-4 दिन में आपने जो देखा है, एक ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कम मेडिटेशन रिट्रीट एंड लाइफ बैलेंस लाइफ ब्यूटीफुल जो हुई है 22 से 26 तक, थोड़ा सा पार्ट कल तक आप महसूस करेंगे. ए कॉन्फ्रेंस ऑन लाइफ बैलेंस लाइफ ब्यूटीफुल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग SEW, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ऑफ RERF एंड प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स माउंट अबू, जो हम लोग जहां है. In which about 600 delegates from different disciplines as engineers, managers, scientific community, IT professional, HRD personnel and different dignitaries from various organizations, government as well as private has participated. The conference comprised plenary sessions, panel discussions, lectures, concurrent sessions, interactive workshops, etc. Besides, the delegates had the opportunity to attend meditation retreat and visit the various exhibition picturesque sites, jo art gallery aur jo piche exhibition with various games. Kuch logo ne games khele honge, apni characteristics ka pata laga hoga, kya kya hume improve karna chahiye, kya kya hamare gun hai, वो गेम्स में बड़े अच्छी तरीके से इंटरैक्टिव तरीके से समझाया गया और आपने खुद अनुभव किया. ऑब्जर्वेशंस, इट इज यूजली द सिंपल स्टेप्स दैट ब्रिंग द मोस्ट जॉय इन टूडेज होलाटाइल एम्बिग्यूअस कॉम्प्लेक्स अनसर्टन वर्ल्ड. All individuals, especially engineers, technocrats and scientists often have challenging professional life and fail to remind ourselves to stop. जो अभी मोहन भाई ने बताया, traffic control. हम लोग दिन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं. हमारा जो activities है आजकल private sector में और government के कुछ sectors में इतना challenging है. कल जो traffic controllers की बात कर रहे थे, air की वगैरह, इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है कि एवरी टू आवर्स दिस बैच इज चेंज्ड. तो ट्रैफिक कंट्रोल हम लोग कहां स्टॉप करना है, जैसे सजेशन दिया गया एवरी वन आवर टू आवर्स व्हाट एवर इज पॉसिबल, आप अपने कन्वीनियंस से अपने स्टॉप्स जनरेट कीजिए और थोड़े देर के लिए उसमें रुकिए, बाबा को याद करिए. गो टू स्मॉल मे बी 30 seconds वन मिनट मेडिटेशन, दैट विल चेंज यूर वर्किंग स्टाइल ट्रिमेंडसली. तो चैलेंजिंग प्रोफेशनल लाइफ के जो ड्रॉबैक्स है उसमें वी शुड रिमाइंड आवर सेल्फ टू स्टॉप एंड एंजॉय द मोमेंट. मोमेंट जो है प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए. फोकस्ड ऑन बैलेंस्ड एजुकेशन, कल भी काफी बहसें हुई क्या क्या सिखाया जाता है एजुकेशन में, जो कुछ नहीं सिखाया जाता है हाउ टू फेस द यूनियंस. यस्टरडे देयर इज पैनल डिस्कशंस वी आर लिसनिंग. कई चीजें हैं जो लाइफ में हमें फेस करना पड़ता है बट नोबडी टीचेस इन अवर करिकुलम. सो ये यहां सीखने को मिलता है. देन बैलेंस डाइट, उसके बारे में भी कल डॉक्टर साहू साहब ने भी बताया और कई लोगों ने भी यहां बताया. और आपको यहां जो एक्चुअल दिया जाता है बैलेंस डाइट, ऐसा नहीं अनलिमिटेड टाइमिंग नहीं है, देर आर फिक्स टाइमिंग, इतने बजे से इतने बजे चाय मिलेगी, नाश्ता मिलेगा, इतना मिलेगा. So that is the you have to learn ki what are the things required. These all things are designed by experts. So balanced diet bhi hai, that plays lot of role in our balanced life and life beautiful mein. Food and thoughts, another diet for our soul is thoughts. Vichar ke baad uchar, uchar ke baad achar, that is the action plan. और उसके बाद एक्शन लेंगे तो साक्षात्कार, यू विल सी द रियलाइजेशन. थॉट्स वर्क एंड रिपोज अवर इनर वर्क फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो बार बार यहां सिखाया जा रहा है. हैव वी फिक्स्ड अवर प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज की कल बात हो रही थी ग्रुप डिस्कशन में. प्रायोरिटीज मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. मैनेजमेंट में कई बार वो गेम दिखाया जाता है, बड़े बड़े स्टोन्स, दैट सैंड एंड सो मेनी थिंग्स. हाउ टू फिक्स फर्स्ट, क्या करना है फर्स्ट, उसको एग्जाम्पल्स तो कई है बट हमें अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करना है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो कोवे के बुक में भी लिखा है कि कैसे है 7 habits ऑफ सक्सेसफुल पीपल में. तो प्रायोरिटीज आपको फिक्स करनी चाहिए, दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. पहले दूसरी नॉन प्रायोरिटी वाले काम करेंगे, मोस्ट अर्जेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट. यू हैव टू डिवाइड इन टू these 2-3 categories. Priorities fix kariye, life becomes really beautiful. Look at our accomplishments. Humne kya khoya ya kya nahi mila, iske bajaye if you look at what I have achieved, that will give you more pleasure. Don't become the member of 99 club. 99 club ek aisi terminology hai ki jisme aadmi hamesha dukhi rehta hai ki wo ek cheez nahi mili. उसी के लिए 99% उसका एकम्प्लिशमेंट जो है अचीवमेंट्स है, उसको भूल के वो एक चीज के लिए हमेशा दुखी रहता है. सो डोंट डू दैट. लुक एट अवर एकम्प्लिशमेंट, रिट्रोस्पेक्ट वेदर वी आर मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस. लाइफ बैलेंस, लाइफ ब्यूटीफुल इज फाइंडिंग ए वे टू चेंज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ फ्रॉम बीइंग मिजरेबल टू सक्सेसफुल. इट्स ओनली माइंड एंड थॉट. आज पेन एंड गेन की जो पीयूष भाई का लेक्चर था, देर इज वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन पेन एंड गेन. आदमी एकदम बदल सकता है. टेक एडवांटेज ऑफ टूल्स एंड हैबिट्स दैट इंश्योर हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड रिड्यूस अवर स्ट्रेस लेवल एंड इंक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ. The topic skirts were relationship balance, tapping mind power, healthy lifestyle, role of meditation in work-life balance, emotional intelligence, जो नरेंद्र भाई ने आपको काफी सारा डिटेल में बताया, साइंस ऑफ मेडिटेशन, सेटिंग लाइफ प्रायोरिटीज, टर्निंग पेन इनटू गेन, द वेबसाइट www.cleannation.com वाज लॉन्च्ड एंड दिस प्रोजेक्ट हैज आल्सो बीन लॉन्च्ड एंड यू कैन सी द प्रोग्रेस और व्हाट एवर यूर फीलिंग्स इन दिस वेबसाइट यू कैन इंटरैक्ट. द थीम बेस्ड कल्चरल प्रोग्राम्स वेर आल्सो ऑर्गेनाइज एज पार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस. On the basis of above observations, following action plan has emerged. This action plan we have divided into four parts. The first part is personal level. Gain awareness of one's own true spiritual self and empower the self through practice of Raj Yoga meditation. जो बार बार आपको सिखाया जा रहा है, आपको first day में ही बताया गया कि what is your true identity. Program one's mind with positive and pure thoughts so that the mind acts like a good friend. Appreciate others, see good qualities in others and escape the rat race. Resolve conflicts through understanding, goodwill and friendship. Adopt values like humility, tolerance, patience, trust and confidence. Cooperation and adjustment. Focus on self-empowerment. Lead the balanced life to make the life beautiful and healthy. These are at the personal level, which is in your control, and you can do lot of work in this and change your life. Then going further, social and family level. Have the understanding and practice of interacting with family members. Promote scientific developments and discourage the use of technology that inhibits holistic development. आज मोबाइल से जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, because मोबाइल के हम गुलाम बन गए हैं. So keep the technology in your control and don't be controlled by the technologies. Build positive attitudes and promote harmonious relationship in family and community. Relationships play a crucial role in maintaining peace in life. Have an attitude of tolerance to build a better response for improving relations. Excellent social relations lead to healthy society. So social relationships, काफी ध्यान दीजिए, and develop a social atmosphere around you. Organization level पे हम क्या कर सकते थे? Lot of senior people are sitting in the audience as well as in the part of the conference. Invest in nurturing spiritual values among their people through conducting relevant training programs. This can be done by senior people. Build productive work culture by spreading team spirit, that is trust, empathy, appreciation and motivation amongst its people. Emulate the Brahma Kumari's model of management of trusteeship. There is a lot to learn. Belongingness and pure motives. Selfless service. इससे आपके skill, scale and speed पे बहुत फर्क पड़ेगा और organizations can reach wonders. Promote environmental friendly products and processes based on value-based science and technology. Zero defect and zero effect. जो clean nature and internal nature as well as the nature cleaning and zero effect on environment. These are the targets. Swachh Bharat Abhiyan जो देश का है उसके साथ ही aligned है वो. Promote cherished values and professional ethics. Relationship balance leads to optimum output. जो unions and जो company के relations है, employee relations, there are very senior position, ED level, director levels, employee relationships, employee management. National level पे हम क्या कर सकते हैं? Whether we can play any role. जो senior लोग हैं, जो national politics में हैं या national level के secretary level पे हैं, otherwise भी जो छोटे level पे हैं, वो भी national level पे बहुत कुछ कर सकते हैं. Meditation should be taught in educational institution from early age. This will inculcate positive vision and empower to face adverse situation in life. एक touch the light program है ब्रह्म कुमारी का जो 7, 8, 9 standards में पढ़ाया जाता है. They teach to children these spiritual values. The spiritual values sciences should be included in curriculum. This teaches the optimum utilization of machine, material, man and money. That we were to create the feeling of brotherhood among all human beings under the fatherhood of God, thus contributing to unity, peace and progress of the nation. एवरीबडी मस्ट राइज अबव द पर्सनल एंड प्रोविंशियल मोटिव्स. अपने अपने स्वार्थ पे मत जाइए, राइज अबव दैट एंड यू विल सी द रिजल्ट्स डिफरेंटली. दैट सच कॉन्फ्रेंसेस विच एम एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स अबाउट द एसेंशियलिटी ऑफ लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स थ्रू साइंस ऑफ मेडिटेशन बी हेल्ड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स एट यूर प्लेसेस वर्क लाइफ बैलेंस एनहांसेज द इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन. दिस विल बी द की टू मेक इन इंडिया प्रोग्राम एंड मेक इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री. बैलेंस्ड लाइफ विल टीच पीपल स्किल एंड रिज्यूनेट द पीपल. इम्प्रूव्ड इंटरनेशनल रिलेशनशिप. इफ वी सी मोदी साहब जो कर रहे हैं अभी सारे विश्व में अपने रिलेशंस भारत के सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे देखिए कि डिफेंस के एक्सपेंडिचर भी कम हो सकते हैं एंड इट कैन प्ले ऑल दी नेशंस ग्रो इक्वली. तो दिस वॉज द एक्शन प्लान विच वी हैव मेड इन 4 पार्ट्स. और ऐसा मत सोचिए कि आप एज एन इंडिविजुअल कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. इसके एक दो लाइन में बताऊंगा आपको. माना के इस जमी को गुलजार न कर सके हम, इस जमी को पूरा तो हम नहीं सुधार पाए, बट कुछ तो खार कम कर गए जहां से गुजरे हम. हम जहां जहां से गए तो थोड़े कांटे तो कम करते गए, और जितना पार्ट हो सकता है हमारा हम उसको इंप्रूव करते गए. थैंक यू वेरी मच.
बहुत बहुत धन्यवाद गोपालकर भाई जी. इन्होंने हमको पूरा जैसे कॉन्फ्रेंस में जो जो भी हुआ, क्या क्या टॉपिक्स हमने लिया था और उसका उसे हमने क्या सीखा है, पूरा एक्शन प्लान हमारे सामने जैसे रख दिया है. एक बार पूरा रिव्यू भी हो गया है. तो अभी मैं चाहता हूं कि ऑडियंस से अब तक हम बोलते रहे, अभी आप बोले कुछ, आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें. आइए बहुत शॉर्ट में, दो दो मिनट में, ताकि काफी लोगों को चांस मिले. चप्पल नीचे छोड़ के आइए. आपका नाम, कहां से आए हैं और फिर आपका एक्सपीरियंस. एक मिनट.
ओम शांति. मैं बीएन शाह, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन से हूं. परम आदरणीय गोदावरी बहन जी, मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथिगण और सभागार में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले लेट अस हैव ए फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड फॉर दिस वंडरफुल मोमेंट. थैंक यू. आई फाइंड नो वर्ड्स ऑफ प्रेज फॉर दिस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्म कुमारीज, where I got this opportunity to come and learn the teachings of life. कहते हैं जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी तक जो लाइफ हमने देखी थी, जो सिचुएशंस हमने फेस किए थे, बड़े उतार चढ़ाव वाले थे. बहुत सारे सवाल जिनका जवाब नहीं मिलता था. आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन कि उन सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए. लेकिन एक सवाल का जवाब वो भी मुझे मिल जाएगा. मुझे पूर्ण विश्वास है कि परम पिता ने हमें इस दुनिया में भेजा किस लिए है. जब वो परम धाम में है तो क्यों हमें भी नहीं बुला लेता। हमने जो सीखा रियल सेंस में, आई हैव डिस्कवर्ड माई सेल्फ कि मैं कौन हूं, परम पिता कौन है, कहां है और उनसे मेरा रिश्ता क्या है। आभास तो पहले से भी था लेकिन वो आभास पूर्णतः सत्य में बदल गया और हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं। सफलता जो मैं समझता हूं सुख और शांति का दूसरा नाम है और उसकी कुंजी, उसकी चाबी आज मुझे मिल गई है और वो चाबी है राजयोग, मेडिटेशन।
अपना एक्सपीरियंस सुनाने को बोला है, अपना अनुभूति एक मिनट में पूरा करके दे दीजिए, बाकी लोगों को भी बोलना है।
तो थैंक यू वेरी मच। और मैंने जो नई बात जो मैंने यहां सीखी, जो राजयोगा मेडिटेशन कि कैसे किया जाता है, कैसे करना है और इसके साथ साथ जो नई बात जो मुझे कुछ भी पता नहीं था, ट्रैफिक कंट्रोल, स्विच ऑफ और कनेक्ट विद दी परमपिता जो हमें रिचार्ज करता है। तो थैंक यू वंस अगेन वेरी मच। ओम शांति।
बहुत शॉर्ट में आपने क्या सीखा ये नहीं बोलना है, आपने क्या अनुभव किया है ये बोलना है। क्योंकि क्या सीखना बोलेंगे तो पूरा कॉन्फ्रेंस जितना टाइम लगेगा उतना टाइम बोल सकते हैं।
ओम शांति। मेरा नाम अमृता है, मैं पूना से आई हूँ। मैंने कुछ पॉइंट समराइज किए हैं अब तक के जो दो दिन तीन दिन में हमने जो कुछ भी सीखा यहाँ से, और मैंने जो उसका एक एसेंस निकाला है, कुछ एक पॉइंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं यहाँ से जाकर उनको इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ अपनी लाइफ में, जो कि मैंने यहाँ से स्टार्ट भी कर दिया और चेंज भी मुझे फील हो रहा है। पहला पॉइंट तो था, मुझे ये याद नहीं कि किसकी क्लास में किसने ये बोला, लेकिन मैंने पॉइंट वाइज लिखा है इसको कि मैं सुबह उठकर एक प्रैक्टिस करने वाली हूँ और ये बोलने वाली हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान की शक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ और मेरा भाग्य बहुत बढ़िया है, वाह मेरा भाग्य वाह। उसके बाद एक इंटरनल डायलॉग मुझे अपने अंदर में बोलना है कि मन और बुद्धि के बीच में जहां मुझे अपने आप से बात करनी है, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तब मुझे अपने आप से बात करनी है और इंटरनल रहते हुए मेडिटेट करना है, उस परमात्मा को याद करना है, उस समय कोई और थॉट मुझे नहीं लेकर आना है। उसके बाद प्राची वैन ने बहुत अच्छी एक डेफिनेशन बताई थी लाइफ की, लुकिंग इनवर्ड एंड फॉरगेटिंग एक्सटर्नली। अपने आप को देखो बाहर की चीजों को, बाहर की दुनिया को भूलते हुए।
आपने जो अनुभव किया है उसके बारे में बताया, एक्सपीरियंस शेयरिंग है ये।
और जो अनुभव मेरा रहा है यहाँ पर आने के बाद कि एक पॉजिटिव थिंकिंग आई है टुवर्ड्स लाइफ, जीवन को किस तरह से देखना चाहिए, उसका नजरिया क्या होना चाहिए हमारे लाइफ में। और जितनी स्ट्रेसफुल लाइफ हम लोग जीते हैं, मैं एक आईटी से बिलोंग करती हूँ तो कितना स्ट्रेस होता है हम लोगों की लाइफ में, उसको ओवरकम करते हुए किस तरह से मुझे अपने आप को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, जॉब भी करनी है, वो सीखा है मैंने यहाँ से कि कितने अच्छे से मैं वो चीज़ प्रायोरिटाइज कर सकती हूँ, गोल सेट कर सकती हूँ और अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल और बैलेंस बना सकती हूँ।
बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट, बहुत शॉर्ट में अपना अनुभव बताइए।
रेस्पेक्टेड दादी गोदावरी जी, शेलू बहन एंड मोहन भाई, आई एम फ्रॉम जुबिलेंट कंपनी बटिया ग्राम खजरूला। मुझे यहाँ पे डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा जी ने यहाँ भेजा। मैं अपने आप को आज बड़ा हर्ष और खुशी से महसूस कर रहा हूँ। मैंने जो चीज यहाँ देखी अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करूँ, किसी भी भाई के अंदर, यहाँ करीब 150-200 भाई जो काम कर रहे थे, हर एक के चेहरे पे एक इतना प्यार से बात किया मुझे, वो मुझे कहीं मिला नहीं। और हर भाई, एक भी भाई ने किसी भी तरीके से क्रोध में बात नहीं किया, जो मुझे हमेशा मिलता रहा। मुझे क्रोध नहीं दिखा, हर भाई के अंदर मुझे एक प्यार से दिखा। मैंने तो इतने 4 साल से मैं अपने टीवी पे जो अपना समाधान प्रोग्राम आता है, भाई सूर्य भाई जी को हमेशा समाधान की तरह वो हमेशा बताते हैं कैसे रास्ते जाना है। जब मैं सुबह वॉक कर रहा था तो उनसे मिला तो मुझे तो और धन्य हो गया कि इतनी महान आत्माओं से भी मैं मिला। मुझे बड़ा खुशी हुआ, मैं 4 दिन के अंदर इतनी चीजें सीख गया, इतना अपने आप में, मतलब मैं वहां जाकर के जो हमारे गजरोला में सेंटर है विमल बहन को बताऊंगा, वहां प्रेजेंटेशन दूंगा कि किस तरीके से मैं स्वर्ग में जाके आया हूं। ये चांस अगर मुझे वर्मा साहब, अगर ये चांस मुझे डॉक्टर पीके वर्मा साहब कुछ समय पहले देते, 15 साल पहले देते, 10 साल पहले देते, तो मैं जिंदगी में कहीं और बढ़ जाता। लेकिन भगवान ने आज ही मुझे यहां भेजा, मैं बहुत खुश हूं। 4 चीजें आपको बता करके अपने शब्द खत्म करता हूं। मैंने जो सबसे बड़ी चीज यहां देखी कि हमारे अंदर जो ए शब्द है, एक्टिव और हर्ट, हमारा हार्ट इतना कठोर हो गया था कि कोई मर जाता, रो जाता, उंगली कट जाती, कुछ भी होता, हमें तकलीफ नहीं होता। लेकिन आज ये देखता है कि मेरा हृदय जो है, मुझे रहम करना पड़ेगा। और मेरे को बी जो बैलेंस की बात आती है, बी से बैलेंस, तो बैलेंस ऑफ माइंड हमको नहीं था। हम किसी को कुछ भी बोल देते थे, चिल्ला लेते थे कुछ, लेकिन आज मैं बैलेंस करके जाऊंगा, उतना ही बोलूंगा जितना मुझे बोलना है। सी, आज मैं चार्ज हो गया हूं यहां से, सी फॉर चार्ज। चार्ज मेरे रिलेशन में, भाई से बात नहीं करता, पिताजी से बात नहीं करता, मेरे भाई, मतलब समाज में आज मैं चार्ज हो गया। अब मैं हमेशा आगे उतर के बात करूंगा, मैं ये अहम नहीं रखूंगा कि वो बात करेगा तभी मैं बात करूंगा, नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा उसके पास, उससे माफी मांगूंगा, उसको माफ करूंगा और स्वयं भी माफी मांगूंगा, अपोलोजाइज करूंगा जो मैंने इतने साल में गलतियां की, अब भविष्य में कभी गलती ना करूंगा। डी एक बहुत बड़ी चीज देखी जो यह प्रेजेंटेशन था और जो हम पीछे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, डिलीट यूर मिस्टेक्स। हमारी जो मिस्टेक्स है वो अब हम हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे जिंदगी में। और एक चीज और जो दादी ने कहा था कि वापस रिपीट मत करना मेरे भाई, जो मैं कल वहां गया था पांडव भवन में, तो वहां मुझे ये शिक्षा मिली और मैं बाबा का कमरा भी देखा, सब कुछ देखा, धन्य हूं मैं आपकी संस्था का। बहुत बहुत मैं मतलब कैसे एक्सप्रेस करूं, मैं इसका एक ऋणी हो गया और मैं ओबलाइज्ड हूं वर्मा साहब का, आपकी संस्था का, और भविष्य में इस संस्था के लिए हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा रहूंगा और जो कार्य मुझे कहा जाएगा, जिस जगह कहा जाएगा, दिल से करूंगा। और बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत गदगद होकर बहुत अच्छे से सुनाया, थैंक यू।
सबसे पहले मैं इस पूरी संस्था में जितने भी भाई और बहन इससे जुड़े हुए हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं जिसकी इस समय बहुत जरूरत थी। इस समय आप अपने चारों तरफ सभी लोग देखते हैं कि लोग इतने परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं, और ये संस्था जिस तरह से काम कर रही है, पहले मैं सोचती थी कि विश्व में जरूर कोई शक्ति है जो इस विश्व को चला रही है और इतने परफेक्शन से चला रही है कि हर पूरा सिस्टम बिना किसी रुकावट के चल रहा है। उसी तरह से मैंने महसूस किया कि यहाँ भी कोई ऐसी शक्ति है जो उस पूरे सिस्टम को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी तनाव के, हर काम बड़ा स्मूथली होता जा रहा है। तो इसके लिए मैं सभी भाई बहनों को जो भी इस संस्था से जुड़े उनको धन्यवाद करना चाहूंगी। और ये इतना अच्छा कार्य है कि जिससे सुख शांति जो जीवन में आज हर आदमी महसूस कर रहा है कि नहीं है उसके, वो अवश्य आएगी, क्योंकि एक एक आदमी चेन बन जाएगा और ये चेन पूरी दुनिया में, विश्व में फैलेगी। इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का भी और मंच पे भी जो लोग बैठे हुए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
अभी काफी आ रहे हैं, समय के मांग देखते हुए लास्ट एक ही है, फिर आगे का कर दो लास्ट, एक लास्ट।
ओम शांति। परम आदरणीय गोदावरी दीदी, मंच पर आती इन विभूतियां और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माई नेम इज कमल एंड आई एम अ पुलिस ऑफिसर एंड इन अ नटशेल आई मस्ट से दैट माई एक्सपीरियंस विद ब्रह्मा कुमारीज हैज बीन टोटली डिवाइन। अर्लियर आई यूज टू फील दैट आई एम अ ह्यूमन बींग हु इज हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस whenever I used to do puja etc. But now I realize that in fact I am a spiritual being who is having a human experience in this world. And the second thing which I have learnt from all my brothers and sisters over here. Ego. That means, once I have ego in me, like in police department, you ought to be like that, you know, sometimes. So, the thing which I've learned from here is, ego actually means edge God out. The moment you have ego, it means you're edging the God out. So, and lastly, I feel that I have become very smart. In fact, I feel all of us have become very smart. And smart in the sense, Didi, it is stress management and right thinking. So I've learned how to manage stress and think right. And in the end, I would like to just quote a few lines. Just two lines. Kehte hain ki soch ko badaliye, sitare badal jayenge. Soch ko badaliye, sitare badal jayenge. Nazar ko badaliye, nazare badal jayenge. Kashtiyan badalne ki zarurat nahi, mere dost. Kashtiyan badalne ki zarurat nahi, mere dost. Sirf dishaen badaliye. Sirf dishaen badaliye, manzilein khud ba khud mil jayengi. Manzilein khud ba khud mil jayengi. Aur main Didi ji ko aadar mein ye bhi kehna chahungi ki यहाँ से इतना कुछ सीखा कि I've been conducting lectures also for various people and मुझे खुशी है कि इतने लोगों तक मैं ये ज्ञान पहुँचा पा रही हूँ. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.
ये लास्ट है, बस अभी और कार्यक्रम आगे है.
मी उषा जैन फ्रॉम दिल्ली. आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज ए वाइस प्रिंसिपल इन कालका पब्लिक स्कूल इन दिल्ली. जो मैंने यहाँ सीखा गजब का है. जो भी कुछ है, जहां भी देखो, जिधर भी देखो, ऐसा लगता है जैसे धरती नहीं स्वर्ग है. स्वर्ग की रचना की है प्रभु ने, स्वयं अपने हाथों से इसको रचा है. और इन तीन चार दिनों में ऐसा लगा जैसे मैं किसी स्वर्ग में रह रही हूँ. और इससे अलग अगर हम अपनी इंद्रियों पर थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे अभी भाई जी ने बताया, ज्यादा सुनो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, नजरों से नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे, चिंतन की धारा बदलो, सब कुछ बदल जाएगा, अपनी सोच बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा. इस तरह से मैंने बस इतना ही महसूस किया कि अगर स्वर्ग है कहीं धरती पर तो यही है, यही है, यही है. और अंत में मैं सभी अपने भाई बहनों का, जो बीके ब्रदर सिस्टर्स हैं जिन्होंने सुचारू रूप से इस कार्य को संभाला हुआ है, उनका सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ. ओम शांति.
इन सबका सुनकर आप सबको भी बहुत उत्साह होता होगा कि हमको भी सुना, हम भी सुने, हम भी सुनाए आपको. इसलिए आपको एक्सपीरियंस फॉर्म दिया गया फाइल में, तो आपकी भावनाएं उस एक्सपीरियंस फॉर्म में भरकर हमको देंगे तो हम वो सब हमारे पास पहुंच जाएगा. क्योंकि अभी समय को देखना भी पड़ता है, नहीं तो अभी
माय सेल्फ इज प्रोफेसर जसवंत राय कौशल फ्रॉम लुधियाना. मैं जहां कैसे आया, ये एक सभी के लिए जानने की बात है. साइंटिस्ट हूं, टीचर भी हूं. जब मैं सब्जेक्ट पढ़ाता था उसमें जो बायोलॉजिकल सब्जेक्ट से सेलुलर लेवल से होल ऑफ दिस बॉडी पढ़ाते हुए आंखों में आंसू आ जाते थे. जिसने जिस सारी कायनात बनाई है जो सब्जेक्ट्स में आती है उसको देखने की लालसा लगी रहती थी. ऐसे ही एक फ्रेंड, वो बीके से जुड़े हुए थे, वो मुझे उस केंद्र में ले गए. केंद्र में जाकर वो उन्होंने कहा कि आपको हम वहां भेजेंगे शांतिवन, वहां जाकर आपके सवालों के जवाब मिलेंगे. दो बार कोशिश की मगर बुकिंग्स नहीं मिलती रही. इस बार दीदी राज ने वहां से मैसेज स्पेशल भेजा कि आप यहां आइए. तो मैं वहां गया तो फिर उन्होंने कहा अब प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स का कार्यक्रम होने वाला है, वहां पर सारे सवालों के जवाब मिलेंगे. मैंने कहा मैंने नहीं जाना. वो कहते क्यों? मैंने कहा जब मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं, एबीसी लेकर जेड तक पढ़ाया है, ये बेसिक तो मैंने जानी नहीं. मुझे पहले यहां जो राजयोग क्लास चलती है सुबह, मुझे उसमें ले लीजिए. मैं उसके थ्रू जब होकर आया, एक महीना भी वहां लगाया जो है, उससे इतनी मन में इच्छा थी यहां आने की. मैं उस केंद्र का लुधियाना का जो हेड ऑफिस है वहां के दीदी और वहां की जो बहनें थी, जो दृष्टांत अभी मेरे यहां साथियों ने दिया है कि ये जैसे स्वर्ग है यहां ये देवीय आत्माएं जैसे फिरती हैं, मुझे ऐसा महसूस वही हुआ था। मगर यहां आकर तो जैसे मैं प्रभु के घर में आ गया हूं। मैं हाईली थैंकफुल हूं वहां के जो इंचार्ज थी दीदी राज जी, जिन्होंने मुझे यहां भेजकर एक मेरे ऊपर मेरे जीवन का बहुत बड़ा एहसान किया है। धन्यवाद। और अगर कोई और भी आगे आना चाहे तो उस कक्षा से थ्रू होकर आइए तो यहां आने का मजा और ही होगा।
थैंक गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई हाईली थैंक यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशनरी एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन टीच हाउ टू लिव आर्ट ऑफ लिविंग। दिस इज बेसिकली दे टीच आर्ट ऑफ लिविंग। नाउ माई एक्सपीरियंस, 24 तारीख को मेरी मम्मी का फोन आया मेरे पास कि यार तेरे भाई के साथ इश्यूज चल रहे हैं 20 दिन से। एक बाबा को लेकर चिट्ठी लिखा, मैं कल गया चिट्ठी लिख के आया और आज न्यूज मिली कि मेरा भाई जो 20 दिन से परेशान था वो सही हो गया, उसके सारे इश्यूज सॉल्व हो गए। दूसरा एक्सपीरियंस, मैं अपने मोबाइल में अलार्म लगा के सोता था 4 बजे, उठा तक भी 4 बजे नहीं। एक साल से कभी 6 बजे उठ रहा हूँ, कभी 7 बजे उठ रहा हूँ, कभी 7:30 बजे उठ रहा हूँ। यहाँ आके ऐसी कंपनी मिली कि मैं 3:30 बजे डेली उठ रहा हूँ। अब मैंने संकल्प ले लिया कि 4 बजे उठना ही है। तो दीज एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुए लाइफ में यहाँ पे वो मैंने शेयर किया आपसे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।
धन्यवाद। नहीं, वो आप एक्सपीरियंस फॉर्म में लिख के दीजिए। थैंक यू। आप सब सोच रहे हैं ये सब क्या हो रहा है ना? तो यहां पर धर्मराज की सभा लगने वाली है। धर्मराज माना युधिष्ठिर नहीं, धर्मराज माना तो धर्मराज की सभा की एक झलक आपको दिखाने के लिए यहां पर बच्चे आ रहे हैं। वो एक नाटक करेंगे आपके लिए, थोड़ा शॉर्ट, थोड़ा डिफरेंस चाहे ना, लेक्चर 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 बातें बातें कितना करेंगे, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ 10 मिनट में बच्चे हमारे सामने ये स्किट करेंगे, धर्मराज की सभा।
ये धर्मराज की सभा है। इंसान जो भी कार्य करता है उसे अपना कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। आइए देखते हैं सेठ करमचंद की कहानी। यह है सेठ करमचंद, एक बहुत बड़े व्यापारी है। इनका खुद का कारखाना भी है, शेयर मार्केट में भी सट्टा करते हैं। जितना इनका कारोबार बड़ा है उतना ही इनका परिवार भी बड़ा है, लेकिन बेचारे अब बीमार पड़े हैं।
पिताजी दवाई ली क्या? अरे आपका बुखार 104 हो गया है, डॉक्टर को बुलाऊं?
अरे नहीं नहीं, 105 आएगा तब भेज देना।
पिताजी मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। पिताजी आंखें खोलो, मैं दीपक। अरे भगवान ये क्या हो गया? पिताजी आंखें खोलो, दीदी मम्मी जल्दी आओ।
अरे क्या हुआ क्या हुआ?
पिताजी
आपको कौन हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो?
अरे मुझे नहीं जानते, मौत के बाद कौन कहा जाएगा, स्वर्ग या नरक, इसका फैसला मैं ही तो करता हूँ।
अरे मगर मुझे नरक की तरफ क्यों ले जा रहे हो, मैंने तो कितना दान पुण्य किया है।
अच्छा लेकिन आपका कोई भी पुण्य कर्म चित्रगुप्त के चोपड़ी में क्यों नहीं है?
ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो 10 साल से गांव वालों को इतना स्वादिष्ट भोजन खिलाया है, गांव वालों ने जिंदगी में इतना बढ़िया भोजन कभी भी देखा भी नहीं होगा।
लेकिन आपने किस खुशी में भोजन कराया?
उससे क्या लेना देना, इतने लोगों को भोजन कराया ये तो पुण्य का काम हुआ ना।
फिर भी यह बताओ किस खुशी में खिलाया?
महाराज
सेठ करमचंद जी ने 10 साल में 6 शादियां की है और उसी सिलसिले में इन्होंने गांव वालों को भोजन कराया है।
क्या 6-6 शादियां?
क्या करे, इन्हें बेटा ही चाहिए था ना, बेटी हुई तो पत्नी को ही बदल डाला।
अरे वाह कामदेव जी, आपको प्रणाम। अब समझे नरक के तरफ क्यों ले जा रहे हैं?
अरे रुकिए रुकिए, जरा सुनिए, मेरा एक बड़ा कारखाना भी है, उसमें 100 कारीगर काम करते हैं जिससे उनका परिवार चलता है।
यह तो बड़ा ही पुण्य का काम है, लेकिन आप जानना चाहते हो आपके बारे में आपके कारीगर क्या कहते हैं? लो सुन लो।
अरे ओ रामू, क्या हुआ, इतने दुखी क्यों? नौकरिया तो सलामत है ना?
अरे कहा बताई, नौकरिया तो सलामत है, हमार सेठ जी तो दिन भर चिल्लाते रहते हैं, गालियाँ भी देते हैं, कितना भी बढ़िया काम करो तो भी गाली भी खाना पड़ता है, हमारी मजबूरी है ना, एक तो पगार भी कम है और ऊपर से सेठ जी की गाली फ्री में, 3 साल से गांव में सूखा पड़ा है ना, खेती भी तो नहीं कर सकते, मजबूरन बीवी बच्चों को संभालने के लिए नौकरियां करनी पड़ रही है।
सुना सेठ क्रोध महाधीश, आपके पुण्य की कहानी।
ठीक है इस बात को छोड़ो, मैंने गांव में जो गौशाला बनाई है उसका क्या?
ठीक है, यह भी तो पुण्य का काम है, आओ वो भी तो देख लेते हैं।
सेठ जी, हमने तो सरकार से 1000 गैया पालने की जमीन मुफ्त में ली थी, लेकिन हमारे पास उसे 500 ही गैया है।
कोई बात नहीं, 500 या 1000 सब एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन गिनने वाला है, बचा हुआ जमीन पर गोडाउन बनाएंगे और कारखाना का सामान रखवा देंगे, अगर कोई इंस्पेक्टर आया तो उसे चाय पानी देकर भगा देना है।
अरे वाह सेठ श्री लोभाधीश, कुछ याद आया, और भी कुछ कहना है?
ठीक है, मैंने और भी कितना धर्म का काम किया है, गए साल मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए गांव के कॉलेज में एक गोल्ड ट्रॉफी देने का आयोजन किया था।
बहुत बढ़िया, तो इस ट्रॉफी की भी गोल्डन कहानी सुनो।
प्रिंसिपल महोदया
जी, कहिए।
मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए कॉलेज में एक गोल्ड ट्रॉफी देना चाहता हूँ और साथ ही अच्छा खासा डोनेशन भी देना चाहता हूँ।
करमचंद जी, आप तो बड़े धार्मिक व्यक्ति हो।
लेकिन एक बात है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए मेरे बेटे को ही चुना जाना चाहिए, डोनेशन की चिंता ना करना, जितना कहेंगे हो जाएगा।
तो मोहेश्वर जी, अब मजा आया, क्या और भी कुछ आपके पुण्य की कहानियाँ बाकी है?
धर्मराज जी, आप तो मेरे कोई भी पुण्य कर्म में विश्वास नहीं करते हो, मैंने तो गांव वालों के लिए अस्पताल भी खोला है जहाँ कितनों का मुफ्त इलाज होता है।
जरूर आपने अस्पताल खोला है, लेकिन उसकी भी कहानी जरा याद कर लो।
सेठ करमचंद जी, हम गरीबों के लिए अस्पताल बना रहे हैं, आप भी कुछ मदद करें तो अच्छा रहेगा।
ठीक है, आप मुझसे कितनी उम्मीद रखते हो?
यही कुछ 50 लाख।
अच्छा है, मैं 50 लाख तो दे दूंगा, लेकिन अस्पताल मेरे खानदान के नाम पर ही होना चाहिए और ऑपरेशन थिएटर को मेरा ही नाम दिया जाए।
ठीक है सेठ जी, आप 70 लाख देंगे तो हम जरूर वही करेंगे जैसा आप कहेंगे।
अच्छा अच्छा, मैं 70 लाख दे दूंगा, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में चक्कू छुरी जो होती है उस पर भी मेरा नाम होना चाहिए।
जरूर जरूर, अगर आप चाहो तो जो मरीजों को खून चढ़ेगा वह भी आपका ही खून दे देंगे।
अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, मुझे तो ये सूझा ही नहीं। यह बात सुनकर मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ, अभी तो मैं अस्पताल के लिए 1 करोड़ दूंगा।
सुना ओ सेठ अहंकारेश्वर, आपका ये चंदा भी पुण्य की गिनती में नहीं गया, बल्कि और ही बोझ चढ़ गया। अब आप समझे हम आपको नरक में क्यों ले जा रहे हैं?
और हाँ, ये लो, जैसा आपको चाहिए हम मरीजों को देने के लिए आपका ही खून निकाल लेते हैं।
नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो बचाओ अरे बचाओ मुझे बचाओ
अरे भूत भूत भागो भागो।
घबराओ नहीं सेठ जिंदा है सिर्फ बेहोश हुए थे।
लेकिन मेरी धर्मराज से भी मुलाकात हुई वो तो मुझे 5 विकारों के बारे में भी समझा रहे थे और मुझे नरक में भी ले जा रहे थे हाला से भी घायल कर रहे थे।
नहीं यह तो आपका वहम था। आप भी इस बात को भली भांति जानते हो कि आपने जो पुण्य कर्म किए हैं उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा हुआ था इसीलिए आपको धर्मराज का अनुभव हुआ। तो आप सबको भी याद रहे शुद्ध निस्वार्थ और निमित्त भाव से किया हुआ साधारण कर्म भी श्रेष्ठ कर्म में गिना जाता है। जब भी हम कोई श्रेष्ठ पुण्य कर्म करते हैं तो उसके पीछे कोई स्वार्थ छिपा हुआ न हो। निस्वार्थ और निमित्त भाव से जब श्रेष्ठ कर्म किया जाता है तब उसका परिणाम स्वयं को भी और सर्व को भी सुख और खुशी की प्राप्ति होती है।
कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो कर्म करो ऐसे कर्म करो।
सभी इधर बच्चों इधर आएंगे। ये सभी बच्चे हमारे मुलन जोन थाने सेंटर से हैं और इन्होंने बहुत अच्छा हमारे सामने स्किट पेश किया है। इन सब के लिए जोर से फिर से तालियां बजाइए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आज का गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर भारत भूषण भाई जी है। ये चंडीगढ़ से आए हैं। वहां का जो भाकरा नंगल डैम सुना है ना, तो भाकरा नंगल डैम के भाकरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है तो उसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस ऑफिसर है। तो ये अभी हमारे सामने उनका जो एक्सपीरियंस है और उनके जो शुभ भावना है इस कार्यक्रम पर प्रति वो हमारे सामने व्यक्त करेंगे। भारत भूषण जी।
ओम शांति। डाइस पे बैठे विशिष्ट गण, दीदी बहनों और भाइयों, मैं भारत भूषण हूं। जैसे पहले बताया है मैं फाइनेंस और चीफ अकाउंट ऑफिसर हूं। फाइनेंस को हेड करता हूं भाकरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में। मैंने पहले सुना था राजयोग के बारे में लेकिन क्या होता है इसके बारे में पता नहीं था और यहां आने के बाद राजयोग को अच्छी तरह से समझ गए हैं। उसको लाइव में इम्प्लीमेंट भी हो गया है। जहां तक जो भी समझाया गया वो ठीक से समझ लग गई। सबसे जरूरी मुझे लगा कि अब तक मैं जो कर रहा था, मैं अपना एक्सपीरियंस ज्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है मैं नया हूं और मुझे पहले किया नहीं था तो अगर मैं कोई गलत चीज मतलब करेक्ट कर दीजिए। अगर मैं गलत समझ गया हूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं ये ठीक नहीं समझा। पहली चीज तो ये समझ लगी कि जो 5 एलिमेंट बॉडी के हैं उनके अलावा आत्मा के भी वर्चूज हैं साथ, जिसके कारण मैं प्रॉब्लम में जो था इस कारण से था कि मैं 5 एलिमेंट पर ही ज्यादा ध्यान दे रहा था, जो सोल की वर्चूज है उसको नहीं देख पा रहा था और उल्टा काम कर रहा था। जैसे अगर मैं कंफ्यूज होता था
तो मैं समझता था कि सामने वाले बंदे को अकल थोड़ी कम है और मैं उसको ठीक करने में लगा रहता था। अब पता चला कि अगर मैं ठीक से मैं कंफ्यूज हो रहा हूं तो मेरे में नॉलेज की कमी है, मुझे उस चीज का ठीक से पता नहीं, मुझे अपने को ठीक करना है, नॉलेज बढ़ाना है। दूसरा, अगर मैं समझता था कि वो बंदे को बात नहीं समझ लग रही और ये मेरे पे ठीक से विश्वास नहीं कर पा रहा है, जो मैं कह रहा हूं ये समझ ही नहीं रहा है, तो अब मुझे पता चला कि मेरे पे वो विश्वास नहीं करता कि मेरे में प्योरिटी की कमी है, मुझे अपनी प्योरिटी ठीक करनी है जिससे उसको मेरे पे विश्वास होगा, जो मेरी कथनी और करनी है दोनों एक जैसी हो जाएंगी तो अपने आप वो चीज ठीक हो जाएगी। तीसरा, ये लगता था कि ये लोग जो हैं इनमें कुछ अकल की कमी है, ऐसे लगता था। वो अब समझ लगी कि मेरे में प्रेम की कमी थी, मैं उनको प्रेम भाव से इस तरह से नहीं देखता था जैसे देखना चाहिए, और लगता था कि दुनिया जो ज्यादा लड़ाई झगड़े के कारण है, लोग ज्यादा करप्ट हैं, उसका कारण ये था कि शांति की मेरे में ही कमी थी, मैं इतना शांत नहीं था कि चीजों को ठीक ठीक से देख सकूं, ठीक से समझ सकूं। और एज आप जो ऑर्गेनाइजेशन से आए, आप जानते हैं कि जो हमारे फाइनेंस के लोग हैं वैसे थोड़े खड़ूस टाइप होते हैं, कोई प्रपोजल को ऐसे ही देखते हैं कि जैसे उसमें सारी दुनिया भर की गड़बड़ उसमें। मैं भी, क्योंकि जॉब का नेचर ऐसा है, मैं भी ऐसे ही देखता था। और तीसरा, सुख की कमी, एक आनंददायक जीवन और पावर, जो एक ये चीजें कि एक मैं पावरफुल हो जाऊं, ये चीजों को सोचते थे। लेकिन अब ये समझ लगा कि कमी और लोगों में नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, मेरे को ही ठीक करना है अपने आप को। और मैं उसको काफी हद तक 3-4 दिन में दिन रात इसी काम में लगा रहा कि जो कमियां हैं जितनी ठीक हो सकती हैं यहां पे करके चला जाए। और मैं ऐसा सोचता हूं अभी तक कि इंस्टीट्यूशन की मेहरबानी और सारी दीदियों की आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से 90% तो मैं ठीक कर लिया हूं अपने आप को, जो 10% कमी रह गई है वो वहां जाके सेंटर से साथ जाके मिलके वो कर लेंगे। एक चीज और, कई बार हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, लेकिन रॉन्ग प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट ऐसा नहीं होता, रॉन्ग प्रैक्टिस से और बेड़ा गर्क होने की संभावना रहती है। तो मैंने ऐसा सोचा है कि जब जहां से चले जाएंगे तो बार बार अपने को सेंटर से जो लोकल है उससे कनेक्ट करके देखेंगे कि कोई गलत, हमारी जो मेडिटेशन हमने सीखी है उसमें कोई गलती तो नहीं कर रहे, कोई ऐसा तो नहीं है कि तीसरा, जो जितनी भी मन की बीमारियां थी वो यहां पे उनको पता चल गया कि ये है सारी, और उनका डायग्नोस भी पता चल गया, ट्रीटमेंट भी पता चल गया। मैं ऐसा सोचता हूं कि अच्छी तरह अपने आप को समझा लिया है कि ये ट्रीटमेंट हमने करते रहना है लगातार, क्योंकि सिचुएशंस बार बार आएंगी और जो पुरानी आते हैं कई बार 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 खड़ी होती हैं, तो उसको बार बार देखने की जरूरत है। तीसरा, यहां पे रह के इतने दिन सोल कॉन्शियस में रहना सीखा, बार बार अपने आप को ध्यान दिया सोल कॉन्शियस में रहने के लिए। ऑफिस में क्योंकि बिजी रहते हैं, फाइलें आती रहती हैं, उसके लिए मैंने ये सोचा है कि एक अलार्म लगा लें मोबाइल पे घंटे घंटे का, यहां जैसे वो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, वो घंटे बाद बजे तो पता चले 2 मिनट के लिए कुछ करना है फिर आगे चलें। मेरा ख्याल है ऑफिस में 7-8 घंटे रहते हैं तो 8 बार ट्रैफिक कंट्रोल करने से काफी चीजें ठीक हो जाएंगी। और तीसरा, अवेयरनेस बढ़ी है इस प्रोग्राम को करके, अपने बारे में अवेयरनेस थॉट्स के ऊपर। बार बार मैं तो चेक कर रहा हूं कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है, कहीं जैसे देखते हैं ना हम बार बार न्यूज चैनल लगा के देखते हैं क्या खबर है, ऐसे मैं अपने आप को चेक करने लग गया हूं कि अंदर क्या चल रहा है, किसके बारे में सोच रहा है, उस पर एक नजर रखनी शुरू की है कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ये। और सबसे जो अच्छे एक्सपीरियंस यहां पे हुए हैं कि जो इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशन जैसे ये चल रही है, ये आत्मिक लेवल पे जो या स्वर्ग जैसा जो फील होता है, ये इसका जो मॉडल है, कम से कम जहां मैं काम करता हूं जो मेरे साथ रिलेटेड हैं उनके साथ तो हम ऐसा व्यवहार करके जो यहां इसको रेप्लिकेट कर ही सकते हैं वो जरूर करेंगे। मैंने इसका टारगेट 3 महीने का रखा है, 3 महीने में मैं सोचता हूं कि ये जो चीजें हैं जैसे यहां पे बड़ी स्ट्रीमलाइंड है, मैं अपने डिपार्टमेंट में ही ऐसा कर पाऊंगा 2-3 महीने में सब। और कुछ लोग जो लगेंगे कि जो उनको यहां भेजा जाएगा जो हेलम ऑफ द फेयर है वो भी सीख लेंगे यहां पे, जहां लोकल सेंटर से कह के लोगों को एक वर्कशॉप करवा के करवाया जाएगा ये काम। तीसरा है और सबसे जो जरूरी चीज सीखी है वो ये है कि मन में लगता था मन बड़ा खराब है, बड़ा पापी कोई चीज है, खतरनाक चीज हमारे में फिट कर दी गई है, यहां आके ये पता चला कि वो भी ठीक ठाक चीज है, कोई हमारे उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमने उसको थॉट गलत दे दे के उसका उसको खराब किया हुआ, उसके थॉट प्रोसेस को ठीक करने से वो ठीक काम करने लग जाता है। दो धारी तलवार की तरह है, चाहे डाकू बन जाओ लोगों की छुरी जैसे पेट काट दो, चाहे ऑपरेशन कर दो, वो दोनों तरह से काम किया जा सकता है। और ये मनी ऐसा है, माइंड ही ऐसी चीज है जो थॉट वेव्स क्रिएट करके हमें वापस शिव बाबा के पास ले जा सकता है। और मैं बहुत कृतज्ञता से भर गया हूं यहां आके, बाबा का किया हुआ काम, उनको जो रेवलेशन हुई, जो इतना कुछ हुआ, जो इतना कुछ वो सोच पाए, इसको इतनी बड़ी संस्था बना पाए और इसको इतना अच्छे से मैनेज कर पाए, बार बार मन धन्यवाद से भर जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा नहीं, मैं ऋणी देना चाहता हूं संस्था का। धन्यवाद देने से थोड़ा बैलेंस हो जाता है और आदमी सोचता है उन्होंने मेरे लिए किया, मैंने धन्यवाद किया, कहानी खत्म हो गई। मैं धन्यवाद नहीं दूंगा, मैं ऋणी रहूंगा जिंदगी भर और इसको आगे लोगों को बताऊंगा इसके बारे में, और ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि बस ये जो हमने सीखा है मैं इसको अच्छी तरह से जिंदगी में उतारूंगा और जो भी मिलेगा उसको भी इसके बारे में बताएंगे। इसके कुछ नोट्स और चैनल तो है ही, लोकल सेंटर है जो लोग समझाने के लिए हैं, जो इसके लिए ट्रेंड है वो उनके पास भेजेंगे, वो खुद ही समझाएंगे। हम तो अभी खुद सीख रहे हैं, अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचे कि दूसरों को समझाने लग जाएं कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये है कि जितना खुद भी समझेंगे और जिसको समझाना है उनको सेंटर में भेज देंगे कि जाओ भाई जाके समझ लो। आपने मेरे को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण भाई जी, आपने अपने दिल के जो फीलिंग्स है और जो आपने संकल्प लिया है वो सब हमारे साथ शेयर किया है। एक छोटा सा चुटकुला सुनाना चाहता हूं। एक बार एक चोर था, एक घर में घुस गया और जैसे ही ढूंढ रहा था कहां खजाना या पैसे रखे हुए हैं, हॉल में पहुंचा तो उसने देखा एक बूढ़ी माँ वहां पर बैठी थी और वो सो नहीं रही थी, वो जागी थी। और माँ ने भी उनको देखा और उनने कहा, बेटा तुम तो दिखने से तो चोर नहीं लगते, बहुत अच्छे करके दिखते हो, कोई मजबूरी होगी तुम्हारी, तुम ऐसे आगे वो दरवाजा है ना, उधर से अंदर जाओगे तो बेडरूम है, वहां पर जो अलमारा है उसमें तीसरे खाने में आपको जो चाहिए है वो जाके ले लेना। मगर जाते जाते पहले कल मुझे रात को एक सपना आया था, वो सुनकर जाना। उन्होंने अपने सपने में के बारे में बताना चाहा, तो इसने भी सोचा हमको तो ये माता तो हेल्प कर रही है तो माँ के बारे में थोड़ा टाइम तो दे सकता हूं अभी, तो वो सुनने लगा। माँ ने कहा, रात को मुझे चारियान दिखाया था तो मैंने जोर जोर से पुकारा, चारियान चारियान, तो ये सोच रहा था ये चारियान क्या होता है। वो उस माँ का बेटे का नाम था। तो बेडरूम से उठ के वापस बाहर आया और चोर को पकड़कर पीटा उसने। तो इधर से निकलकर जब वापस दुनिया में जाएंगे आप बहुत सारे अच्छे अच्छे संकल्प लेकर जरूर जाएंगे, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, मगर किसी का सपना नहीं सुनना, उसमें फंस जाएंगे। अपना संकल्प में दृढ़ रहना। अच्छा, तो आगे हमारे साथ डॉक्टर निरंजना बहन जी है जो हमारे अलकापुरी बड़वा सब जोन का इंचार्ज भी है और ये मेडिकल विंग के सेक्रेटरी भी है और पूरा देश विदेश में कई जगह पर इन्होंने सेवाएं दी है, क्लासेस किया है, अपना सर्विसेज दिए हैं और हर साल हमारे कॉन्फ्रेंस में इनके सेवाधारी आते हैं। और ये आज इस बार जो स्टेज पर जो भी सेवाएं चल रही है स्टेज के पीछे वाले सेवा पूरा इनका होता है, तो स्टेज अच्छा चल रहा है तो धन्यवाद इनको। तो अभी डॉक्टर निरंजना बहन जी, उन्होंने डॉक्टरी भी पढ़ाई की है, फिर उसके बाद ब्रह्मा कुमारी बनकर ईश्वरीय डॉक्टर बनकर सेवाएं दे रहे हैं। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा हमें अपना अमूल्य वचन ब्लेसिंग्स दे और मेडिटेशन भी कराए। ओम शांति। डॉक्टर निरंजना बहन जी।
ओम शांति। मंच पर उपस्थित महानुभव एवं सभा में उपस्थित आत्मिक भाई और बहनें, पिछले 3 दिन से लाइफ बैलेंस्ड लाइफ ब्यूटीफुल सुंदर विषय पर चर्चा सुनते रहे हैं। सभी ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया है, क्योंकि आप सभी साइंस बेस्ड है तो मैंने भी ऑब्जर्व किया कि आप सभी ने यहाँ की बातों को, यहाँ की चर्चा को, यहाँ के एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छी तरह से अपने आप में लिया है। भाई भारत भूषण जी ने भी बहुत अच्छी तरह से अपना एक्सपीरियंस सुनाया है। सच में आपने अपने जीवन के अंदर एक अनोखा अनुभव किया होगा। ये 3-4 दिन आपके लाइफ के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रहे होंगे, परंतु ये इम्पोर्टेंस जो है वो जीवन के परिवर्तन का आधार बन जाए। आपने सार रूप में कंक्लूडिंग, ये कंक्लूडिंग सेशन है हमारा, मैं समझती हूँ कि आपने अपने आप में एक बात जरूर समझा होगा, धारण किया होगा कि जीवन के अंदर अगर आप लाइफ को बैलेंस्ड एंड ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो इन सब का जो आधार है वो है सोच, संकल्प, विचार, जिनको इनर विल पावर अगर कहे। आपके अंदर जितनी संकल्प की शक्ति ज्यादा होगी उतना आप जीवन में जो चाहे सो कर सकते हैं। बहुत करके ऐसा कहा गया है समाज के अंदर, हमारे भारत के जो महान ग्रंथ है महाभारत अथवा रामायण, उसके भी मुख्य जो पात्र बताए हैं, चाहे रावण है या दुर्योधन है, उनके मुख से यही कहलवाया गया कि मुझे पता है क्या करना चाहिए परंतु वो मैं नहीं कर सकता हूं, मुझे ये भी पता है कि क्या नहीं करना चाहिए परंतु वही करने के लिए मजबूर हूं। बहुत करके मानव जीवन में यही होता रहा है। ज्ञान की कोई कमी नहीं है परंतु जब प्रैक्टिकल जीवन में उतारने की बात आती है, जो आप सबसे कहा गया कि आप, जैसे भाई मोहन जी ने कहा कि आप बाद में क्या करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जानना एक बात है पर जानी हुई बातों को जीवन में लाना नेक्स्ट स्टेप है, दूसरी बात है। और उस समय जो भी युद्ध बताए गए हैं, महाभारत युद्ध है, वो शुरू हो जाएगा आपके मन के अंदर भी कि ये जाना है, ये करना है, परंतु बाकी बहुत बातें हैं। उस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आप आपके जीवन के हर क्षेत्र में सक्सेस पाना चाहेंगे परंतु किसी भी क्षेत्र में सफलता का आधार आपके विचार है। किसी व्यक्ति को अगर पेड़ काटना हो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो उनके छुरी को धारदार बनाए, नहीं तो वो कितना भी समय देकर के काटता रहेगा, नहीं कट सकता। उसी प्रकार हम जीवन में जो करना चाहिए वो नहीं कर सकते हैं, इसका कारण है कि हमारा जो संकल्प है वो इतना शक्तिशाली नहीं है। तो हमारे जीवन की हर सफलता का आधार, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में है, पारिवारिक जीवन में है, आपके कार्य क्षेत्र में है या सामाजिक जीवन में है, इन सब का मूल आधार संकल्प की शक्ति है। और संकल्प की शक्ति को बढ़ाने का एकमात्र उपाय पॉजिटिव थिंकिंग है और मेडिटेशन है। ध्यान अथवा मेडिटेशन ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा आप अपने विचारों को शक्तिशाली बना सकते हैं। हम मेडिटेशन को इस प्रकार कहते हैं कि इट इज ए क्रिएटिव पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिएटिव रचनात्मक सकारात्मक चिंतन। और जब आप क्रिएटिव पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, जो आपको यहां सिखाया गया है, चिंतन करते हैं, स्वाभाविक रूप से आपके मन के संकल्प की जो गति है वो कम हो जाती है। और मन के संकल्प जितने कम उतने वो शक्तिशाली। एक भाई कल मुझे मिले, बोला कि बहन जी हमारा योग नहीं लगता। तो मैंने कहा अभी अभी आए हैं, अभ्यास से हो जाएगा। बोला 1.5 साल से जा रहा हूं सेंटर में। अरे अच्छा ठीक है, तो आप क्या करते हो? बोला बस बैठा रहता हूं। मैंने कहा यही तो बात है, खाली बैठे नहीं रहने का। कभी कभी ये हो जाए, लाल लाइट हो गई, एक गीत बज रहा है, हम बैठे रहे, नहीं। मेन थिंग इज क्रिएटिव पॉजिटिव थिंकिंग। आपको चिंतन करना है, और वो चिंतन भी न केवल पॉजिटिव थिंकिंग बट इट इज स्पिरिचुअल थिंकिंग। वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और वो स्पिरिचुअल थिंकिंग जो आपको बताया गया मेडिटेशन के लिए, कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं इस बारे में सोचना, अथवा मैं आत्मा हूं इस बारे में सोचना, सोचने का प्रयत्न करना भी इफेक्टिव है। तो आप जरूर ट्राई करेंगे अपने जीवन के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, घर जाके सबसे पहले आपको ये करना होगा कि मैं जाऊं सेंटर में, मुझे जाना है। आपका संकल्प है कि मुझे जाना है, परंतु वो जाने के संकल्प के सामने दूसरे हजारों संकल्प आएंगे। जैसे कि पांडव 5 थे, कौरव 100 कहते हैं। तो जाने का संकल्प आपका 5% बना रहेगा, बाकी बहुत बातें होंगी जो आपको रोकने वाली। अर्थात आप नहीं जाना चाहते ऐसा नहीं, पर ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी करना है, वो भी करना है, उसमें सेंटर में जाने का संकल्प थोड़ा कम परसेंटेज में आ जाएगा। उस समय युद्ध की आवश्यक, युद्ध की बात है। उस समय आपको अपने मन के संकल्प को शक्तिशाली बनाना होगा कि नहीं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस क्या है। बाकी सब बातें इम्पोर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुझे अपने आप में शक्तिशाली बनना है। तो सभी ने अपने अनुभव में भी कहा है, आपको मंच से बार बार यही बातें कही जा रही है। तो जीवन के अंदर, रोज के रूटीन के अंदर, भाई मोहन भाई ने कहा कि सेट योर रूटीन अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसमें से थोड़ा सा टाइम निश्चित रूप से मेडिटेशन के लिए निकालिए। तो अभी हम फिर से, क्योंकि ये एक बात ऐसी है, आपको सब वैरायटी बातें जब कही जाती है, बीच में आपको एक किट बता दिया गया, कोई गीत गा लेता है, कोई डांस कर लेता है, हमें अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। परंतु ध्यान में बैठ के आप ये सोचो कि मैं आत्मा हूं, ये आपको थोड़ा नीरस लग सकता है, परंतु उसके लिए आपको यू हैव टू डेवलप द टेस्ट। कई बार हमें नेसेसिटी के आधार पर टेस्ट को डेवलप करना होता है। जैसे कोई व्यक्ति एकदम नॉर्मल हेल्दी है, तो मैं भी उसकी रुचि होगी, मेरे को मिठाई बहुत पसंद है, मेरे को तो मीठा ही पसंद है। पर एक बार अगर उसको डायग्नोस हो गया कि वो तुम डायबिटिक हो, तो फिर क्या कहेंगे? अब इतना इंटरेस्ट नहीं है, चाय तो पहले एकदम मीठी ही पसंद थी, पर बाद में क्या कहेंगे? अब मेरे को फीकी चाय पसंद है। पसंद की बदल गई आवश्यकता के आधार पर। उसी प्रकार थोड़ा सा अगर आपको रुचि ना भी बैठे, तो हमें रुचि को उजागर करना है, डेवलप करना है। यू हैव टू डेवलप द टेस्ट फॉर मेडिटेशन। आपको इंटरेस्ट आएगा बाद में तो, पर पहले स्टार्ट करने के लिए आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो मैं समझती हूं कि बार बार इस बात को सोचना, इसको ही अभ्यास कहते हैं, चिंतन कहते हैं, परंतु वो करने के लिए हमें अपने आप में दृढ़ संकल्पना करनी होगी। तो आइए फिर से हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं थोड़े समय के लिए। आप सभी को भी अंदाज आ गया है कि आपको थोड़ा ज्यादा अलर्ट होकर के, बैक स्ट्रेट करके बैठना है, जागृत रहने के लिए जागृत रहना ही बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आंखें खुली रख करके बैठेंगे और सोच को, विचारों को अनुभव में लाने के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे। ध्यान को दो आंखों के मध्य भ्रुकुटी में केंद्रित कीजिए। सोचिए, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, चैतन्य सितारा आत्मा हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है, मैं शरीर को धारण करने वाली शक्ति चैतन्य बिंदु आत्मा हूं। पांच तत्वों का बना हुआ ये शरीर तो जड़ है, मैं चैतन्य हूं। कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मन, बुद्धि, संस्कार सहित मैं करता हूं। मूल स्वरूप में मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब हम विचारों के माध्यम से एक रूहानी यात्रा करेंगे। पांच तत्वों से पार अपने मन को ले जाइए। हम सूर्य, चांद और सितारों से पार इस दुनिया से उपराम होकर के स्वयं प्रकाशित सुनहरे लाल रंग के वतन में अपने आप को महसूस करते हैं। जो मुझ आत्मा का मूल वतन है, घर है, मैं चैतन्य सितारा, अ पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश की दुनिया में उपस्थित हूं। मेरे मन के आंखों से मेरे सामने मैं एक दिव्य ज्योति को देख रहा हूं। चमकता हुआ अजब सितारा, मुझ आत्मा के पिता, परम पिता, परम आत्मा शिव बाबा, शिव बाबा के किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। शांति के सागर परमात्मा शिव से किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है। सर्वशक्तिमान, सर्व गुणों के सागर विश्व नियंता शिव बाबा से गहन वाइब्रेशंस विचारधारा मुझ आत्मा में समा रही है। इस अनुभव को लिए हुए अब मैं वापस अपने कर्म क्षेत्र पर जा रहा हूं। फिर से अपने आप को दो आंखों के मध्य द्रकुटी में एक सितारा महसूस कर रहा हूं। अब मुझ आत्मा को ये महसूस हो रहा है कि शांति मेरा स्वधर्म है, मुझे अब विश्वास हो रहा है किसी भी परिस्थिति में मैं स्वयं को शांत चित्त रख सकता हूं। किसी भी समस्याओं का समाधान मेरे में स्वयं में है। अब मुझे ये महसूस हो रहा है जीवन केवल आनंदमय है, स्वयं के जीवन के द्वारा मैं औरों के जीवन को भी आनंदमय बना सकता हूं। यही मेरे मन का दृढ़ संकल्प है। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति।
यहाँ का वातावरण कितना शांत हो गया आप सब महसूस कर रहे हैं। तो जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो वाइब्रेशन सिर्फ आपके अंदर नहीं पूरा वातावरण में फैलते हैं और ऐसे ही पूरा विश्व का परिवर्तन भी होता है, थोड़े थोड़े ही नक्यूने से। तो इसलिए आप रेगुलरली जब ये प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ अपना ही नहीं पूरा विश्व में शांति फैलाने के कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर निरंजना बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने इतने अच्छे से हमको योग के बारे में बताया, क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर हमको प्रैक्टिकली उस अनुभूति में भी लेके गए। अभी आगे हमारा सत्र के चेयरपर्सन गोदावरी दीदी जी है, जो राजयोगिनी बीके गोदावरी दीदी जी जो है वो हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के मुंबई जोनल कोऑर्डिनेटर भी है और चीफ ऑफ मुलन सब जोन, ब्रह्मा कुमारी मुलन सब जोन का चीफ भी है, और ये 1958 से लेकर ये ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़े हुए हैं और 1974 से मुलन सब जोन के हेड करते आए हुए हैं और वहां की काफी सेवाएं आगे बढ़ाया है, और इनको थाने भूषण अवार्ड भी मिला है थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, क्योंकि वहां पर इतने अच्छे अच्छे सेवाएं ब्रह्मा कुमारी संस्था के थ्रू उन्होंने करवाया। तो इनके ऐसे जो हमारे चेयरपर्सन गोदावरी दीदी है वो अपना बात हमारे सामने रखें।
ओम शांति। अभी अभी सभी शांति के वाइब्रेशन में इतने शांति का चारों ओर वातावरण हो गया है, लेकिन आज का दिवस बड़ा ही अनमोल दिवस है। आज हम देख रही हूं कि चार दिनों से कंटिन्यू आप सभी साइंटिस्ट इंजीनियर जो भी भाई बहने यहाँ पधारे हैं और इस ज्ञान का इतना अनमोल लाभ ले रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आज तो ये हमारी ईश्वरीय फैमिली कहेंगे, परिवार कहेंगे, और इस परिवार के बीच में इतना वैरायटी इस कार्यक्रम भी चला, तो वो देख करके ऐसा लग रहा था कि आज सचमुच परिवार में एक ईश्वरीय ज्ञान की हम सभी मिलकर के पिकनिक कर रहे हैं, और इस पिकनिक में इतनी अच्छी अच्छी डिशेस भी मिल रही है जिसको कहेंगे ज्ञान की, योग की, मानव ईश्वरीय याद की, नैतिक मूल्यों की, और पूरे विश्व के अंदर ये ईश्वरीय सेवा का कार्य जो चल रहा है उनकी स्मृतियों का भंडार ये सभी को मिल रहा है। और अभी सभी ने यह तो मन के अंदर ठान ही लिया होगा कि अभी हमें कल से नहीं लेकिन आज से भी नहीं लेकिन अब से हमारे जीवन में हमें क्या करना है। और यूं भी आप देखो तो कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, कई धर्म प्रधान हमारा देश है, कई धार्मिक कार्यक्रम भी करते हैं, तो उसमें भी 3 दिन का यज्ञ होम हवन इत्यादि करते हैं, फिर लास्ट के दिन क्या करते हैं सभी, जो भी लास्ट होता है ना वो सभी यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करते हैं कि नहीं करते, कभी सुना होगा ना। हाँ, तो सभी उसमें तिल होता है, जेव होता है, वो घी होता है, फिर नारियल होता है, लास्ट के समाप्ति में सभी नारियल स्वाहा की हमारा यज्ञ की समाप्ति के ये चिन्ह बताते हैं। परंतु हमें याद आ रहा था कि यहाँ भी जो भी आए हैं तो आज हम समाप्ति तो नहीं कहेंगे, पहले ही चर्चा हो गई है कि अभी आद हो रही है, अंत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी के समय के अनुसार जो कार्यक्रम चला उनके समय के लिए कहेंगे कि आज माना लास्ट दिन है, तो उस दिन में कहते नारियल का स्वाहा करो, तो नारियल माना कि आप देखो उनका नाम ही है नारियल, तो नारियल का मतलब भी होता है क्या होता है कि वो चीज है नो रियल, जो नारियल है वो क्या चीज है, जीवन में ज्ञान क्या मिला है कि ये जो देह है हमारी उसके लिए कहते हैं कि पांच तत्वों का बना हुआ पुतला है, उसके अंदर चैतन्य शक्ति एक आत्मा है, और जो अंदर में नारियल के अंदर जो सफेद जो नारियल को निकलता है कोकोनट, तो उसको आप देखो तो वो उसमें ही तत्व भरा रहता है। तो यहाँ भी परमात्मा पिता निराकर श्री परमात्मा ने यही कहा कि जो रियल चीज नहीं है उसको छोड़ दो, बाकी जो रियलिटी है चैतन्य शक्ति आत्मा रियल है उसको भेजने वाला परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है सर्व समर्थ है जिसको सत्चित आनंद स्वरूप कहती है सत्यम शिवम सुंदरम कहती है, वो परमात्मा गॉड इज ट्रूथ है, गॉड इज लाइट है, माइट है, वो रियल है। तो जब हम आत्मा समझ करके रियल अपने आप को आत्मा समझ करके गॉड फादर हमारा पिता है और कोई नहीं है, उनके साथ कनेक्शन जोड़ने से संबंध जोड़ने से एक नहीं लेकिन अनेक अनेक प्राप्तियों का भंडार जीवन के अंदर मिल जाता है। हमको भी उसका अनुभव है कि 45 साल पूर्व हमें ये ज्ञान मिला, वह दिन आज की घड़ी में देख रही हूँ कि परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से, माना अभी तक तो सिर्फ गाते ही थे कि तुम्हें माताश्च पिता बंधु सगा, परंतु अभी पता चला कि हमारे माँ बाप पिता बंधु सखा सर्व भगवान हमारा कैसे है। जब उन संबंधों के साथ याद करते हैं तो सभी प्रकार की प्राप्तियां हमें सुलभ हो जाती है। अभी अभी सुना कि इतना संकल्प दृढ़ करो तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, और हम लोगों ने ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अनुभव किया है कि अगर मनुष्य चाहे तो उनको सब कुछ मिल सकता है, कर सकता है। परमात्मा ने इनको निर्णय करने की, सोचने की, समझने की, अनुभव करने की सभी शक्तियां दिया हुआ है। उन शक्तियों का सिर्फ प्रयोग करे या उनका उपयोग करे तो मैं सचमुच चैलेंज देके आपको कह सकती हूँ कि आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ प्राप्तियों का भंडार मिल सकता है, आप रियली उसका अनुभव कर सकते हो। हम लोग हर कदम कदम पे परमात्मा को, हमको तो अभी वो प्रैक्टिस क्या कहेंगे, लेकिन ऐसे ही वो जिस दिन हमको ज्ञान मिला समझ मिली उसी दिन ही ऐसा हुआ कि अरे ये तो पिता अपना ही है हमारा ही है। आज हमको जब ज्ञान नहीं था समझ नहीं थी तो हजारों जगह पर बुद्धि का डायवर्जन हो गया था, हजारों जगह पर वो बुद्धि बिखरी हुई थी। फिर कोई कोई गीत भी कभी सुनते थे कि मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा वहां गिरा, सभी तो टुकड़े गिर गए थे लेकिन कोई टुकड़ा बच गया जो भगवान के शरण में रख दिया, भगवान के बन गए। जब भगवान के बन गए तो भगवान ने स्वीकार कर लिया, उसका कारण बस यही भगवान को यही पसंद है। पिता को एक ही चीज पसंद है कि मन की सत्यता, मन की पवित्रता, मन की स्वच्छता। आप मंदिर में जाओ किधर भी जाओ, देखो मंदिर में भी जाकर के लोग कह के आते हैं कि मैं मूर्ख खल कामी, मेरे में कोई भी प्रकार का गुण नहीं है प्रभु, मैं तो अवगुणों का भंडार हूं। लेकिन वो सच्चे दिल से कहते हैं तो परमात्मा उनके दुर्गुण मिटा देते हैं, उनको वो शक्ति प्राप्त होती है। परंतु सिर्फ कहकर के आए मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, अब मैं ये नहीं करूंगा न वो नहीं करूंगा, लेकिन घर में आने के बाद फिर वही के वही जो व्यक्ति बन जाता है वही पाप कर्म, अभी देखा न कर्मों का लेखा जोखा कैसा होता है, जो सिर्फ अपने नाम के लिए काम करते हैं, भगवान का नाम ऊपर लेते ही नहीं है, सिर्फ अपने नाम से ही जो व्यक्ति काम करते वो अपने नाम में ही खाते में जमा होता है। परंतु जो भी कर्म करो उसमें यही हो कि मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, हमारी बड़ी दादियाँ, हमारे ब्रह्मा बाबा, हमारी मम्मा माता पिता हम लोगों को इतनी शिक्षाएं दिया है कि जो भी कार्य करो उसमें निमित्त मात्र, निमित्त है निर्माण चित्त, इतनी नम्रता रखो जीवन के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ में जो जीवन धन्य बन जाए। तो ये शिक्षाएं जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर मिल रही है, ऐसी अजर अमर शिक्षाएं हमने भी अपने लौकिक जीवन के अंदर बहुत सारे शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का, प्लस कई प्रकार की किताबों का अध्ययन किया होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद जो अनुभव किया, तो कहते हैं कि जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि, जहाँ न पहुंचे कवि वहाँ पहुंचे अनुभवी। तो रियली जीवन में जब अनुभव किया, यहाँ भी जब कईयों का अनुभव सुन रही थी तो मुझे भी ख्याल आ रहा था कि सचमुच अनुभव एक बहुत बड़ी चीज है, जो एक बार जिसने अनुभव किया उनको कोई भी कभी भी वहां से हटा नहीं सकता है, वो अंगद मिसल बन जाता है। अगर ऐसा कोई अनुभव नहीं है और वो ऐसे ही चलते रहते हैं, एक ने कहा, दूसरे ने कहा, इसने कहा, वो इसलिए हम भी चल पड़े हैं, वो नहीं है। लेकिन अनुभव की हुई चीज कभी भी जीवन के अंदर से जा नहीं सकती है। तो आप लोग भी यहाँ इतने दिन से यहाँ पधारे हो और इतना अच्छा ज्ञान की चर्चाएं आध्यात्मिक साइंटिस्ट इंजीनियर के साथ साथ ये भी शिक्षा, क्योंकि इससे ही बहुत कुछ हमारी लाइफ की उन्नति होती है, जो है ही कि बस जो मन लाइफ बैलेंस, लाइफ वैल्यूबुल है, इतना ब्यूटीफुल है, तो ईश्वरीय ज्ञान के बिना इतनी ब्यूटी आत्मा के अंदर, चैतन्य शक्ति के अंदर, जब तक रियल ब्यूटी नहीं आई है तब तक मन भटकता रहेगा, मन दुखी होता रहेगा, अशांत होता रहेगा। लेकिन उन सभी का मेन फाउंडेशन है मन की प्यूरिटी। जो कुछ कार्य करो मनसा को एकदम पवित्र बनाए। कोई भी अच्छा कार्य घर में भी कोई करते हैं तो पहले शुद्धता को देखते हैं, तो यहाँ भी मन को पहले शुद्ध बनाओ तो शुद्ध मन समृद्धिशाली और भाग्यशाली बन ही जाएगा। तो हमारा आप सभी से ज्यादा टाइम न लेते हुए यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भगवान के घर के ईश्वरीय दरबार में, ईश्वरीय महफिल में पधारे हो। इतनी वैरायटीज ज्ञान का आपको इतना स्कोप मिला है, इतना आपको थालियां भर भर करके चीजें मिली हुई है। अभी वो सारी चीजें अपने लिए तो भल लगा वो ही, लेकिन औरों के लिए भी कहा जाता है कि सरोवर तरोवर संत जन चौथा वर्ष में परमार्थ के कारण चार धरिया दे है। हमारी जीवन सिर्फ अपने लिए न हो लेकिन औरों के लिए भी हो, ये ईश्वरीय कार्य का जो अभी कलयुग चल रहा है, भयानक युग चल रहा है, जिसमें किसी का भी मन स्वस्थ नहीं है, ऐसे भयानक युग के अंदर भी ईश्वरीय याद में रह करके मन को स्वस्थ बनाना, और सबसे पहले चैरिटी बिगन्स एट होम, घर को भी माना स्वस्थ बनाना, परिवार को भी बनाना, समाज को भी बनाना और पूरे विश्व को बनाना, उनके लिए अपने अंदर में पहले फाउंडेशन ये मजबूत हो कि ईश्वरीय कार्य है और इस ईश्वरीय कार्य में हम एक अपनी अंगुली दे रहे हैं। देखो अंगुली में कितने वो ये आते हैं, हिस्से कितने हैं, तीन ही है ना। हाँ, तो ये मन वचन और कर्म, और ये भी कह सकते हैं कि तन मन धन, जो भी हमारे से हो सकता है हमारी लाइफ ईश्वरीय कार्य के अर्थ ही बीते है। और जो ईश्वर का कार्य सृष्टि पर अभी चल रहा है कि कलयुग में से मुझे सतयुग माना स्वर्ग इतनी अच्छी मूल्यवान दुनिया, इतनी देवताई दुनिया, इतनी अच्छी वैल्यूएबल दुनिया, ब्यूटीफुल दुनिया मुझे बनानी है, तो ये बैलेंस अवश्य रखो कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी सब कुछ आप कर सकते हो। बैलेंस मन का चाहिए कि मन आपके कहने पर चले, आप मन के कहने पर नहीं चलो। भगवान भी कहता है कि गरी गरी मन का आप दोष नहीं निकालो, हमारा मन ही खराब है, मन ही खराब है, हम क्या करें। लेकिन कहते हैं कि मन को सुधारो, परंतु मन को मारो नहीं घड़ी घड़ी। मन को सुधारने की माना परिवर्तन करने की कोशिश करो। जो यहाँ से इतनी शिक्षाएं प्राप्त की है, उन शिक्षाओं के द्वारा अपने मन को इतना मजबूत बनाओ जो कमजोरी का नाम निशान न रहे। और आज लास्ट का दिन है, तो यज्ञ के अंदर भी कोई आहुति का मतलब है, अपना जो कुछ दुर्गुण है, अवगुण है, जो अपने जीवन के अंदर परेशान करता है, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तो अभी जब भी हम लास्ट में 2 मिनट प्रभु को याद, बाबा को याद करेंगे, तभी वो मन ही मन से संकल्प करके यहाँ ही छोड़ के जाना, साथ में नहीं लेके जाएंगे। तो ये ईश्वरीय कार्य जो नई सृष्टि रचना का जो चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा आपका योगदान, और इंजीनियर और साइंटिस्ट का तो खास 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 योगदान उसमें चाहिएगा ही। तो सभी ये योगदान करेंगे तो बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ बन जाएगी। ओम शांति।
अभी गोदावरी दीदी जी ने ईश्वरीय कार्य में हम कैसे सहयोग दे सकते हैं और उससे हमारे जीवन को कैसे ब्यूटीफुल बनाना है, इसके प्रति आपने काफी अच्छा डिटेल में हमको बताया। आगे इस समाप्त सभा की भी समाप्ति का ओर चलते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीके विनोद जैन जी, जो हमारा ट्रॉमा हॉस्पिटल है आबू रोड में, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, ये हमारे विंग के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए भी है, तो विनोद जैन जी उनका थोड़ा अनुभव भी सुनाएंगे और वोट ऑफ थैंक्स भी देंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये अभी 3 दिन से ये जो टॉपिक्स चल रहा है, लाइफ बैलेंस और लाइफ ब्यूटीफुल, ये मैंने प्रैक्टिकल देखा। मैं पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने साकार ब्रह्मा, जिसके तन में परमात्मा आते हैं, उनकी पालना ली। 52 ईयर्स से मैं इस ज्ञान और योग से जुड़ा हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो मैं शिव बाबा को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो 52 ईयर्स पहले उनका परिचय मुझे मिला, और उनका जो माध्यम है ब्रह्मा बाबा, उनको मैंने पत्र लिखा 1964 में, जब मैं इंजीनियरिंग में स्टूडेंट था, कि बाबा इस जिंदगी में एक ही इच्छा थी मेरी कि सच्चाई को प्राप्त करना, और वो अभी मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो अभी ये जो इंजीनियरिंग है, मैं उस टाइम में धनबाद में पढ़ता था इंजीनियरिंग में, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में। तो मैंने कहा बाबा ये 4 साल का जो कोर्स है, इसको करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि सच्चाई मिल गई, और 4 साल कोर्स करने के बाद फिर मैं आपका विश्व में परिचय दूं तो 4 साल ये वेस्ट हो जाएंगे। पर बाबा तो हमारा भविष्य को जानता है, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों को जानता हूं। तो मुझे पूरा विश्वास था कि ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में शिव बाबा आते हैं, वो मेरे जन्मों को जानते हैं, तो जो वो कहेंगे उसको मैं 100% उनकी आज्ञा को मानूंगा। हम अपनी भाषा में उसको श्रीमत कहते हैं, श्री माना श्रेष्ठ, मत माना राय। तो बाबा ने कहा, जब मैंने कहा बाबा ये वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ एनर्जी है 4 साल इंजीनियरिंग करना, तो बाबा ने कहा जो कि मेरे भविष्य को जानते थे कि ये 4 साल की इंजीनियरिंग पूरा करो तो फिर बाबा राय देंगे। तो भगवानों वाच्य, भगवान ने कहा मैंने माना, 4 साल की इंजीनियरिंग पूरा करके फिर बाबा को लिखा कि बाबा अभी जॉब करने की कोई इच्छा नहीं है, बस आपकी ही सेवा करें, आपका ये परिचय देश और विदेश में दें, वही एक इच्छा रही है। फिर बाबा ने कहा जो कि मेरे भविष्य को जानते थे कि बाबा ने कहा नहीं, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करो। 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करा, क्यों? वो मेरे भविष्य को क्यों जानते थे वो थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताता हूं, क्योंकि मैं अपने भविष्य को नहीं जानता था। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि ऑलरेडी सरेंडर है, तो शरीर से सरेंडर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए जानते थे कि उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दिया, जहां भी रहोगे इंडिया में या एब्रॉड, वहां मैं अपने आप तुम्हारे द्वारा मैं अपनी सेवा अपने आप लूंगा। फिर इंडिया में बाबा ने मुझे जॉब दिलवाया असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और फिर बाबा ने ही मुझे भेजा अमेरिका 1981 में, क्योंकि बाबा को पता था कि 4 साल की इंजीनियरिंग करना और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना ये इसलिए आवश्यक है कि अमेरिका में बाबा का मैसेज जाएगा। तो 34 इयर्स से फिर मैं अमेरिका में हूं, 6 साल से मैं इंडिया में अपनी सेवा दे रहा हूं, मैनेजर ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर। हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, बाबा ने कितनी मदद की इस लाइफ में, पर पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही कुमार हूं जो बाबा का मैसेज देने के लिए अमेरिका गया और इंडिया के बाहर में रहता हूं। 52 इयर्स हो गए हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो 3 दिन से चल रहा है, लाइफ बैलेंस और लाइफ ब्यूटीफुल। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा, उनकी लाइफ कितनी बैलेंस लाइफ थी। 92 इयर्स की एज में उन्होंने कभी भी लकड़ी नहीं ली, चश्मा नहीं लिया, स्ट्रेट चलते थे और लोटस पोजीशन में योग कराते थे, और 18 आवर्स डेली का उनका रूटीन था, पर हर चीज एक्यूरेट। बाबा को मैंने बहुत नजदीक से देखा, हर चीज में एक्यूरेसी थी बाबा के। वो घड़ी नहीं पहनते थे, पर घड़ी उनके हिसाब से चलती थी। इसका मतलब ये है कि जितना एक्यूरेट टाइम घड़ी देती है उतना ही बाबा एक्यूरेसी से काम करते थे। तो बाबा की कहानियां, बाबा का चरित्र तो बहुत है, बहुत माना बहुत, परंतु जो टॉपिक है वो बहुत सुंदर टॉपिक है। बाबा ने मेरा जीवन भी बैलेंस जीवन बनाया, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को दिल से, मेरी आत्मा से बहुत बहुत थैंक यू देता हूं, और आप सभी से भी कहता हूं कि आप भी, हम उनको प्यार से बाप दादा कहते हैं, उनको दिल से थैंक यू करें जो इस प्रोग्राम में ये जो टॉपिक रखा, इतना सुंदर टॉपिक, वो सक्सेसफुल रहा, और जो एक्शन प्लान रहा वो भी आप जाकर उस एक्शन प्लान को प्रैक्टिकल में करें। बाकी ये जो लाइफ बैलेंस और लाइफ ब्यूटीफुल, इसको मैंने बहुत नजदीक से देखा। बाबा ने, हम बाबा कहते हैं शॉर्ट में, वैसे बाप दादा, बाप दादा ने डॉक्टर सतीश गुप्ता, जो कि वर्ल्ड फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हम दोनों साथ में ही काम करते हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में, और साथ में ही रहते हैं एक ही बिल्डिंग में, उन्होंने ये जो प्रोग्राम डिवाइस किया है शिव बाबा ने उनके द्वारा, कि 6000 हार्ट पेशेंट डायबिटिक पेशेंट स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी 6000 पेशेंट को उन्होंने अपने प्रोग्राम से लाइफ बैलेंस एंड लाइफ ब्यूटीफुल से क्योर किया। ये सारा डॉक्यूमेंटेड है। उनको कई कंट्री से अवार्ड भी मिले हैं और अभी भी वो एक कंट्री में रशिया के एक कंट्री में गए हुए हैं वो अपने प्रोग्राम के लिए। तो 6000 पेशेंट पर ये प्रैक्टिकल किया, उनकी हार्ट की आर्टरी जो 100% 99% ब्लॉक थी वो इस प्रोग्राम के द्वारा लाइफ बैलेंस और लाइफ ब्यूटीफुल वो एकदम ठीक हो गई है। और आप भी, सबके पास कंप्यूटर तो होगा लगभग, आज तो जरूरी है, नेसेसरी है, तो उस कंप्यूटर में जाके threadhealthcare.org पे आप जाके रिसर्च करें कि कितने पेशेंट सक्सेस इससे हुए हैं। जस्ट नॉट हार्ट, एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर, हार्ट द ब्लैक बैक पेन, दूसरे भी शारीरिक पेन सब ठीक हो जाते हैं, पर ये प्रोग्राम को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। बाकी जो मेरा, जिसके लिए मुझे यहां बुलाया गया है, सबसे पहले मैंने कहा शिव बाबा बाप दादा को दिल से थैंक यू, फिर जिस ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इनकी संचालिका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी जानकी जिसकी ब्लेसिंग से ये सक्सेस हुआ प्रोग्राम, उनको दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, उनकी ब्लेसिंग से ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ। फिर दादी गुलजार जी और दादी रतन मोहिनी जी और निर्वैर जी जिनकी ब्लेसिंग से ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ, उनको भी दिल से मैं धन्यवाद करता हूं और उनकी ब्लेसिंग से उनको नमस्कार करता हूं। बाकी जितने सारे डिपार्टमेंट हैं उनके नाम तो बहुत हैं, स्टेज का जैसे आपको बताया, स्टेज सजाने का, म्यूजिक का, स्किट का, ट्रांसपोर्टेशन का, फूड का, इलेक्ट्रिसिटी का, और कितने डिपार्टमेंट हैं, यहाँ 50 डिपार्टमेंट करीब हैं, सभी को दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और कोई भी डिपार्टमेंट को दिल से, उन्होंने दिल से, जब ये आप सभी का ये अनुभव भी है कि यहाँ कोई भी इच्छा से कोई काम नहीं कर रहा है, आल्ट्रुइस्टिक सेवा जो मैंने देखा इस संस्था में है, निस्वार्थ, या इंग्लिश में उसको आल्ट्रुइस्टिक सेवा कहते हैं, वो मैंने विश्व में, पूरा विश्व देखा मैंने, परंतु जो सच्चाई और सफाई और जो प्रैक्टिकल देखा मैंने वो इस संस्था में ही देखा। इसको केवल मैं नहीं कहता, मैं अमेरिका में रहता हूं, अमेरिकन्स भी कहते हैं, और भी जिन देशों में, चाइना में गया, चाइना में भी इसको मानते हैं, जो इतनी सच्चाई और सफाई है ये इसी संस्था में है। बाकी जो स्टेज पर हमारी पूजनीय आदरणीय चेयरपर्सन गोदावरी बहन है, जिनको मैं 45 साल से तो मैं जानता हूं, जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था गोवा में तब से मैं इनको, बॉम्बे मेरा ज्यूरिसडिक्शन था, तब मैं आया करता था बॉम्बे इंस्पेक्शन में, तब से मैं जानता हूं, तो उनको दिल से धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर बी के निरंजना जिन्होंने इतना अच्छा अपना मेडिटेशन कराया, उनको दिल से धन्यवाद और उनको नमन करता हूं। मिस्टर भारत भूषण जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं चंडीगढ़, उनको दिल से धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने इतना टाइम निकाला और इसको सक्सेस किया। जो मिस्टर अशोक गुप्ता जो चंडीगढ़ से आए हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इतना टाइम निकालकर अपना टाइम दिया और इसको सक्सेस किया। मिस्टर खुबालकर जो बड़ौदा से आए हैं, ओएनजीसी में कार्यरत थे पहले, उनको भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब ताली बजाते जाइए। उन्होंने इतना प्रसारित किया, इतने दूर से आए इस प्रोग्राम की सक्सेस के लिए। और मिस्टर बी के नरेंद्र पटेल को भी धन्यवाद करता हूँ। और मेरे जो दिल के साथी हैं, जिन्होंने इस ज्ञान में योग में आने के लिए मुझे इतना मदद किया, हम एक ही क्लास में पढ़ते थे इंजीनियरिंग में, मिस्टर बी के राजयोगी मोहन सिंघल, और आपके बिना ये संभव नहीं हो सकता था जो आप ऑडियंस में बैठे हैं, और आपने इतना 3 दिन 4 दिन का टाइम दिया, आपके बिना ये सक्सेस होना संभव नहीं था। और आपको आपको अपने लिए धन्यवाद देता हूँ, आप अपने लिए धन्यवाद करें। और जिसका नाम छूट गया हो उनको भी दिल से धन्यवाद देता हूँ, और जिनकी ब्लेसिंग हमारे साथ है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। बाकी इसका एक्शन प्लान आप अपने अपने स्थान पर जाकर जरूर इसको प्रैक्टिकल करें, क्योंकि दिस इज द ओनली एक्शन प्लान विच विल बेनिफिट इन योर लाइफ। क्योंकि मेरा अपना अनुभव है, 45 ईयर से ज्यादा, माना 52 ईयर्स से ये मेरा अनुभव है कि मेरी तो लाइफ चेंज हो गई है। और मेरा दिल से ये चाहता हूँ जो इसमें जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं उनकी भी लाइफ चेंज हुए, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। और मेरी ही नहीं, जो आपको बताया 6000 पेशेंट की लाइफ चेंज हुई है, और उनके द्वारा अभी दूसरों की 1-to-1 जो दूसरों को बताते हैं, तो उस तरह हजारों व्यक्तियों की जो पेशेंट हैं उनकी भी लाइफ चेंज हो गई है। क्योंकि जो डिजीज होती हैं शरीर के अंदर, 90% से ज्यादा डिजीज जो हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं। ये साइंस कहती है, मैं नहीं कहता, मेडिकल साइंस कहती है कि 90% डिजीज साइकोसोमेटिक यानी मन के द्वारा होती हैं। या जब हम मन परमात्मा में लगा देते हैं तो वो डिजीज ठीक हो जाती हैं। ये साइंस का प्रूव है, आप 3dhealthcare.org पर जाके इसको चेक कर सकते हैं। और अंत में मैं परमात्मा की याद में सभी को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, आपने जो इतना टाइम दिया।
सबको धन्यवाद देने के लिए मैं विनोद जैन भाई जी को भी धन्यवाद देता हूँ। और अभी सबके जाने से पहले 2 मिनट ईश्वरीय याद में बैठकर फिर समापन करेंगे।
खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी।